आप देखिए, भाई नेविल हाथ रखने में विश्वास करते हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। अब मैं इसे कल रात को ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास आज रात आपके लिए इसमें से होकर देखने का समय नहीं है। शायद कल रात के संदेश पर प्रश्न है। अब यदि किसी के पास किसी भी संदेश के विषय में कोई प्रश्न है, तो केवल उन्हें एक रात को लिख कर दे और उन्हें अगली रात को ले सकता हूँ। अब कल रात के लिए मैं लेना चाहूँगा, या मेरा मतलब, मुझे यदि संभव हो सके तो कुछ सेवक लोग चाहिए, यदि नहीं तो कुछ अच्छे मजबूत पुरुष या महिलाएं जिन्हें हम जरूरत के समय बुला सकते हैं। उस कार्यक्रम में कल रात को हम संदेश के बाद आरंभ करेंगे पवित्र आत्मा के लिए और हाथों को रखना, और उसके बाद वहाँ पर आपके पास ठीक यहाँ रहने का सौभाग्य है। यदि आप चाहें तो छुट्टियों के दौरान, यदि इतना समय लेता है ताकि मर जाएं, और फिर यदि नहीं, यदि आप अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें खुशी होगी यदि आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आप बस नहीं जानते कहाँ जाना है। हम कुछ सेवकों को लेना चाहेंगे, उनके फोन नंबर को लेना चाहते हैं, यदि वे बाहर से आए हैं उनके नंबर जहाँ वे ठहरे हुए हैं, जहाँ से हम उन्हें तुरंत ही संपर्क कर सकते हैं, और एक को एक घर में, एक को दूसरे घर में, और एक को दूसरे में, जिससे कि वे तुम्हें निर्देश दे सकें, आप जो इस महान आशीष के लिए इच्छा रखेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। कल रात हम बोल रहे थे ये क्या था, पवित्र आत्मा क्या था, और हमने इसे पाया कि यह उस हरेक चीज के विषय में है जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की थी। इसमें हमने बस वही पाया जिसकी परमेश्वर की कलीसिया को आवश्यकता होगी। हमने देखा ये एक मुहर होगी, एक सहायक, विश्राम और आनंद और शांति और पुनरुत्थान, और वो सब जिसकी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से प्रतिज्ञा की थी, पवित्र आत्मा में रखी हुई है। और अब आज रात हम उस पर प्रचार करना चाहते हैं, या उस पर बात करना चाहते हैं, उस पर सिखाना। मेरे पास यहाँ लगभग 3 या 4 लिखे हुए पन्ने हैं, या उस पर वचन हैं, जिनमें कल रात मैंने अपनी कुर्डेन की कॉन्कॉर्डेंस की किताब को यहीं छोड़ दिया था, और मुझे यह नहीं मिली, और मुझे आज वचनों से जितना हो सकता था मुझे बस उसमें से होकर जाना था। अभी और कल, आज रात हम इस पर शिक्षा को ले रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को भेजने का उद्देश्य क्या था, ये किसके लिए है, यदि यह इतनी महान चीज है तो परमेश्वर ने इसे क्यों भेजा। उसके बाद कल रात हम उस पर बात करना चाहते हैं, क्या यह आपके लिए है, और आप इसे कैसे पाते हैं, और आप कैसे जानेंगे जब आप इसे पा लेते हैं। और तब उसके बाद हम उसमें से होते हुए लेंगे वचनों के साथ, इसे वचनों के द्वारा समझाएंगे, और सब चीजों के लिए वचनों का उपयोग करते हुए, उसके बाद जो पवित्र आत्मा की इच्छा रखते हैं तब वे आगे आएंगे, और तब मुझे आशा है कि उसके बाद से बेदारी आरंभ हो जाएगी पवित्र आत्मा के साथ, तब आगे बढ़ने के लिए। अब क्योंकि कल रात बहुत से कलीसिया के कमरों में कुछ देर तक रुके रह सकते हैं, मुझे लगता है कि क्या हमें उतने सेवक मिल सकते हैं, और वे लोग जिनके पास लोगों को अगुवाई करने का अनुभव है, कि वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, कि उन्हें प्रोत्साहित करें कि घर में जाएं, एक महिला के साथ और उसके पति के साथ, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो पवित्र आत्मा की इच्छा रखता है, जिसे क्या करना है इस बारे में अच्छी तरह से निर्देश दिया गया हो। क्या आप अपना बस फोन नंबर या पता पास्टर को देंगे आज रात या कल रात को, बस इसे भाई नेविल को दे दीजिए, तब यह हमें एक सभा के लिए एक साथ एकत्र करेगा। बस अपना फोन नंबर दें जहां हम आप तक पहुंच सकें, और फिर बताएं मैं उपलब्ध रहूंगा, और क्या हमें आप मुझे एक घर में रखना चाहते हैं। यदि यह एक अकेली महिला है तो हम एक महिला को भेज सकते हैं, देखिए इस महिला के पास, और फिर यदि यह एक घर में है जहां एक पुरुष और उसकी पत्नी है, इसलिए तो हम एक सेवक को भेज सकते हैं, और हमें आपका सहयोग करने में खुशी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हर एक जन इसमें दिलचस्पी रखते हैं, यही सबसे आवश्यक है। और याद रखें, वह जो एक प्राण को उसके गलतियों से बचाता है, उसके बहुत से पापों को पर्दा कर चुका है, देखा। और मसीह की दुल्हन भूखी और प्यासी है, वो परमेश्वर की संतान को जन्म देने के लिए करा रही है। और अब आज रात इससे पहले कि हम वचनों को पढ़ें, आइए हम प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। और बस इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आप सिर को झुकाने के साथ क्या आपके पास एक विनती होगी? बस हाथ उठाकर कहो, परमेश्वर मैं सत्य निष्ठा से मेरे हाथ उठाता हूँ, मैं आवश्यकता में हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आप हरेक को आशीष दें। वह आपके हाथों को देखता है, दूतों ने उनके विनतियों को ले लिया है। और स्वर्गीय पिता, अब हम आते हैं फिर से प्रार्थना में आपकी ओर आते हैं, जो कोई संदेह नहीं कि इस छोटे से स्थान में आज रात परमेश्वर की संतानों के बीच प्रार्थना की जा चुकी है और वो गीतों को गाया गया है, और हमने परमेश्वर की स्तुति से आनंद से भरे हर्षोल्लास होकर हृदयों को ऊपर उठाया है। दाऊद ने कहा कि वो संतों की सभा में आकर अपनी विनतियों को ज्ञात करवाएगा, और आज रात वहाँ बहुत से हाथ हैं। शायद हो सकता है मैं कहूँगा आज रात इस इमारत में बैठे हुए उन 80% लोगों के विनती के लिए उनके हाथों को उठाया है। ये दिखाता है प्रभु कि हम आपके बिना नहीं जा सकते, हमारे पास दिन प्रतिदिन आप होना है। आप हमारा जीवन है, हमारा आनंद है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी स्थायी शक्ति है, हमारा रहने का स्थान, हमारी ढाल, शत्रु से हमारी ढाल है। और हम आपके बिना जीवन की इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, इसे करना हमारे लिए पूरी तरह से असंभव होगा, और हमें पूरी तरह से आप पर निर्भर होना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक अंधकार और निराशाजनक देश में से होकर चल रहे हैं। हर तरफ से शत्रु ने हमें जाल और फंदे देकर घेर लिया है। प्रभु हमारे पथ हमें परेशान करने के लिए शत्रु के जाल से भरे हुए हैं, और हम यह भी जानते हैं मार्ग के अंत में हमारे पास वो लंबी छाया की घाटी होगी जिसमें से होकर जाना है, उसे मृत्यु कहा जाता है। हे प्रभु, तब कौन हमारे हाथ को थामेगा? हम आपको अभी जानना चाहते हैं प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि आपने हमारे हाथों को थाम लिया है और हमने आपके हाथ को थाम लिया है, जिससे कि हमारे पास वो लंगर किया हुआ आश्वासन हो सकता है कि जब हम अपने जीवन के उस अंतिम महान क्षण में आते हैं, जो उस द्वार में प्रवेश करता है जिसे मृत्यु कहा जाता है, कि हम उन पुराने समय के संत के साथ कह सकते हैं, मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जब वो बुलाता है तो मैं मृतकों के बीच में से बाहर आ जाऊंगा। अब पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी विनतियों और हमारे इकट्ठे होने को आशीष देंगे, अपने वचनों को आशीष दीजिए। और यदि मैं कुछ ऐसा कहता हूँ जो आपके वचन या आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, आपके पास अब भी मुंह बंद करने की सामर्थ है, जैसा आपने दानियल के उपस्थित होने पर सीयों की मान में किया था। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप आज रात हमारे कान और हृदय को खोल देंगे और उसमें भूख और प्यास की सृष्टि करेंगे। होने पाए वे इतने प्यासे हों कि वे सो न सकें और न ही विश्राम कर सकें जब तक वो ढांढस देने वाला न आ जाए। हम विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में उसके आगमन की छाया में जी रहे हैं, और यही ये संदेश है जो निर्देशित किए गए हैं प्रभु। यह लोगों के लिए है कि वे ध्यान रखें, चेतावनी को लें, और हो सकता है आज रात हम ठीक अभी छिलके को निकाल दें, इसे वहाँ मेज के किनारे पर रख दें, कहें प्रभु परमेश्वर मैं आपके लिए एक पात्र हूँ, आपकी आत्मा को मेरे जरिए से प्रवाह होने दीजिए, मुझे ढालकर और अपनी इच्छा के अनुसार बनाइए, मैं अपने हृदय को, अपनी शक्ति को, अपना सब कुछ आपके खातिर समर्पित कर दूंगा। हमारी सुनिए प्रभु, हम यहाँ दिखावे के लिए नहीं है। इस बरसात की रात में हम यहाँ बस ऐसे ही नहीं है क्योंकि कोई और जाने के लिए स्थान नहीं है। हम यहाँ अपने हृदय में एक सत्य निष्ठा समर्पित पवित्र उद्देश्य को लिए हुए हैं, जो कि आपके निकट आने के लिए है। यह जानते हुए कि आपने प्रतिज्ञा की है कि यदि हम आपके समीप आएंगे तो आप हमारे समीप आएंगे, और इसलिए हम यहाँ हैं। वो जो भूखा आता है वो बाहर भूखा नहीं जाएगा। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, यीशु ने कहा, क्योंकि वे भर दिए जाएंगे। और यदि हम रोटी मांगे तो हमें पत्थर न मिलेगा, हमारे पास ये भरोसा है। और यदि हम मछली मांगे तो हमें सांप नहीं मिलेगा, लेकिन पिता हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग के मन्ना के साथ खिलाएगा, उसके वचन और उसकी आत्मा के जो उसकी गवाही देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु, और हमारी विनतियों का, जैसा कि हम आगे आपकी प्रतीक्षा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब आप जो इन वचनों को लिखकर रख रहे हैं, यदि आप मेरे साथ फिर से संत यूहन्ना के 14वें अध्याय की ओर जाएं, हम संत यूहन्ना के 14वें अध्याय से आरंभ करना चाहते हैं, और आइए हम लगभग 14वें पद से आरंभ करेंगे। संत यूहन्ना 14:14, और इस वचन के बस एक भाग को पढ़ेंगे। अब इसमें आप उस विषय में बहुत कुछ पाएंगे जिस पर मैं आज रात बोलना चाहता हूँ। और याद रखें, आप जिनके पास लाल अक्षर वाली बाइबल है, ये लाल रंग में लिखा है, ऐसा है, ये वे वचन हैं जिन्हें यीशु ने स्वयं बोला था। इसलिए हम निश्चित हो सकते हैं कि यह उसी तरह से होगा जैसा उसने कहा है। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। अब हम 14वें अध्याय के 14वें पद से पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। क्या ही एक धन्य प्रतिज्ञा है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता। अब आप जो यूनानी बाइबल से पढ़ते होंगे इसे यहाँ पर देखेंगे। ना देखने का अर्थ होता है समझना, क्योंकि संसार उसे नहीं समझता। यह बिल्कुल सच है। मुझे अब इसे फिर से पढ़ने दें। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। किसे? उस सहायक को, क्योंकि वो अब तुम्हारे साथ रहता है। वर्तमान काल, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये क्या है? वही सहायक। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मैं, हर कोई जानता है कि मैं एक व्यक्तिगत सर्वनाम है। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में, वहाँ पर मेरे विचार का केंद्र बिंदु होगा। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मुझे उसे भी अब फिर से पढ़ने दे। उस दिन, वो महान दिन, न्याय का दिन, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यही दुनिया ही है, संसार का क्रम। यदि आप देखेंगे तो वहाँ मामूली सा फर्क है। यहाँ पर एक जी है और यह यहाँ पर कहता है दुनियाई या संसार की प्रणाली, यही कलीसिया और इत्यादि है। देखो, क्या हुआ कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं और उन पर नहीं? आप इसे कैसे कर सकते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। आमीन। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। कलीसिया की बातों को मान सकते हैं, लेकिन उसके वचन को मानना, आप देखो, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और इन बातों को लाएगा। यही उसके वचन है। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को किस उद्देश्य से भेजा था? होने पाए वो उसकी आशीषों को उसके वचन में जोड़े। यीशु ने कहा कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और तुम मैं तुम में और तुम मुझ में। अब यदि हम इसे कहते थे, अब याद रखना, यह टेप पर होने जा रहा है। लुइस विले के एक मसीही व्यवसायी ने कुछ समय पहले मुझे फोन किया था और उसने कहा, यह एक शर्म की बात है बिली कि ये संदेश, जैसा कि आपने कल रात को कहा, ये संदेश यहाँ 40,000 लोगों तक नहीं पहुँचता है, सिवाय आपके छोटे से भवन के 150 या 200, 300 लोगों के। मैंने कहा, श्रीमान, अब से 6 महीनों में यदि यीशु रुका रहता है तो सारा संसार इसे सुन लेगा, समझे? वे टेप संसार भर में जाते हैं, देखो, चारों ओर। और इसलिए हम यहाँ अभी उसी शिक्षा को दे रहे हैं जिसे हम सत्य होने का विश्वास करते हैं और जो हमने पाया है, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए इसे सत्य होने की पुष्टि की है। अब उद्देश्य, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को भेजने का उद्देश्य क्या था? अब मैं इसे यहाँ चिन्हित करूँगा, यूहन्ना 14 पद 14 से आरंभ करते हुए और अध्याय में से पढ़ते हुए आधार के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य हम यहाँ देखते हैं पवित्र आत्मा को भेजने में एक उद्देश्य था कि परमेश्वर स्वयं अपनी कलीसिया में वास करे और कलीसिया के जरिए से अपनी योजनाओं को जारी रखे। कि परमेश्वर मसीह में था, वो मसीह के द्वारा अपनी योजनाओं को जारी रखता है, मसीह में से कलीसिया में से होते हुए उसके काम को जारी रखता है। अब हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। हमने कल रात को जाना कि ये परमेश्वर है। अब जब हम परमेश्वर पिता के बारे में सोचते हैं, जैसा कि यीशु ने यहाँ उसके पिता के बारे में बोला, परमेश्वर वो पुत्र यीशु की नाई, परमेश्वर जिसे हम आज पवित्र आत्मा कहते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि तीन भिन्न भिन्न अलग परमेश्वर हैं। इसका अर्थ होता है कि ये तीन कार्य स्थान में एक परमेश्वर है। क्या हम इसे इस तरह कह सकते हैं, जो कुछ परमेश्वर था उसने मसीह के अंदर उंडेल दिया, क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया और इसे मसीह के अंदर उंडेल दिया, और मसीह परमेश्वरत्व के दैहिक रूप की परिपूर्णता था। जो कुछ यहोवा था उसने मसीह के अंदर उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह था उसने कलीसिया में उंडेल दिया, न ही एक व्यक्ति में लेकिन पूरी देह के अंदर। वहाँ जहाँ पर हम एकता में एक साथ आते हैं, हमारे पास सामर्थ होती है। जो कुछ परमेश्वर था वो मसीह में था, और जो कुछ मसीह था वो सब आप में है, क्योंकि परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। पहला तिमुथियुस 3:16, यदि आप इसे लिख रहे हैं, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद बड़ा है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ और हमने उसे हाथों से छुआ। परमेश्वर यहोवा देहधारी हुआ और धरती पर चला, और हमने उसे अपनी आंखों से देखा। आप जानते हैं, यूहन्ना 14 के उसी अध्याय में फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा दे और यह हमें संतुष्ट करेगा। यीशु ने कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे नहीं जानते। जब तुम मुझे देखते हो, तुम पिता को देखते हो, और तू मुझसे क्यों कहता है हमें पिता दिखा? परमेश्वर देहधारी हुआ था। अब यहाँ है ये, पिता आपके ऊपर परमेश्वर था। हम कहते हैं हम आदम के बाद से हैं। परमेश्वर पिता मूसा और इसराइल की संतान के ऊपर आग के खंभे में था। उसके बाद परमेश्वर हमारे साथ मसीह में हमारे साथ चला, हमारे साथ बात की, हमारे साथ खाया, हमारे साथ सोया। परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, और अब परमेश्वर हम में। जो कुछ परमेश्वर था मसीह के अंदर आ गया, जो कुछ मसीह था कलीसिया के अंदर आ गया। ये क्या है? परमेश्वर आप में कार्य कर रहा है। संसार में कहीं पर भी जहां वो आपको बुलाना चाहेगा, आप ठीक वहां होंगे, उसकी भली इच्छा के लिए आप में काम को करते हुए। इसके लिए हमें परमेश्वर को किस तरह से धन्यवाद देना चाहिए? परमेश्वर पवित्र आत्मा को उसकी कलीसिया में रहने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए भेजा, हर एक युग में से आगे बढ़ते हुए उसकी दैविक इच्छा के कार्य को करते हुए। जब मनुष्य आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वे आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वे तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं जिसने आपको भेजा है। इसलिए यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के निमित्त लोग तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुराई करेंगे, झूठ बोलेंगे, धन्य हो तुम। और फिर से, जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हैं, वे सब सताए जाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने आप को मसीह में ज्ञात कराया, तो उन्होंने उससे घृणा की। किसने उससे बुरी तरह से घृणा की थी? कलीसिया ने। कलीसिया ने उससे बुरी तरह से घृणा की थी। उन्होंने उससे उस शराबी से भी अधिक बुरी तरह से घृणा की थी। उन्होंने अन्य सभी लोगों से भी अधिक उससे बुरी तरह से घृणा की थी। यह कलीसिया थी जो उससे घृणा करती थी। तो इसलिए जब आप दुनिया को देखते हैं, संसार का क्रम संसार उसे नहीं जानता, मतलब कलीसिया जो ऐसा ही नाम की कहलाने वाली है उसे नहीं जानती। वो उसके अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र बनने की सामर्थ्य दी, उनके लिए जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया।
Oh, how we should love him and worship him. Amen.
ओह हमें उससे किस तरह से प्रेम करना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर का उद्देश्य जो संगति में होना चाहते हैं। जैसे इससे पहले हम उस विषय को छोड़े, आइए इसका उपयोग करें। रूत के दिनों में छुटकारे की व्यवस्था में जब नाओमी ने परीक्षा कठिन समय के कारण देश को छोड़ दिया, वो मोआबी देश में चली गई जो बस गुनगुने नाम मात्र के मसीह लोग थे, क्योंकि मोआबी लूत की बेटी में से आए थे और वे नाम के कहलाने वाले विश्वासी थे और मिश्रित थे। तब उसका पति मर चुका था और उसके दोनों पुत्र मर चुके थे, और घर के रास्ते पर नाओमी, रूत और नाओमी उसके घर के रास्ते पर थे। उसकी एक बहू ओरपा, उसने कहा कि वह अपने देश वापस लौट जाएगी, उसके देवताओं के पास और उसकी कलीसिया के पास और उसके लोगों के पास। और नाओमी ने रूत को वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जहाँ तुम मरोगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तुम दफन होती हो वहाँ मैं दफन होऊंगी, और मैं पीछे नहीं हटूंगी। यही है जब एक व्यक्ति ने दर्शन को पाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लोगों ने क्या कहा, तुम वहाँ एक पवित्र शोर शराबा करने वाली या कुछ और बनने के लिए जा रही हो। रूत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ परमेश्वर के एक उद्देश्य को पूरा होना था। और बस निसंदेह आप आज रात पवित्र आत्मा के लिए भूखे हैं, ये आप में कुछ तो है जो आपको खींच रहा है, यही आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य पूरा होना है, बिल्कुल जैसा ये रूत के साथ हुआ था। कहानी बहुत ही सुंदर है, मैं इसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। आप छुटकारे की व्यवस्था को जानते होंगे कि जब बोआज, आप कहानी को जानते होंगे कि रूत वहाँ किस तरह से खेत में बीनती थी और बोआज से अनुग्रह को पाया, और इससे पहले कि वह उससे विवाह कर पाता, उसे वह सब छुड़ाना था जो नाओमी ने खोया था, और केवल एक ही था जो नाओमी की जाती हुई संपत्ति को छुड़ा सकता था। छुटकारे की व्यवस्था में वो था एक छुड़ाने वाला निकट संबंधी, निकट कुटुंबी होना था इससे पहले उसे छुड़ाए, और वो उसका सबसे निकट कुटुंबी था, और उसे फाटक के बाहर एक सार्वजनिक रूप से चिन्ह को बनाना था या सार्वजनिक रूप से अंगीकार करना था कि वो सब जो नाओमी ने खोया था उसने छुड़ा लिया है। और बोआज ने प्राचीनों के सामने उसके जूते को पटकते हुए ऐसा किया और कहा, यदि यहाँ कोई ऐसा है जिसके पास नाओमी का कुछ भी है तो मैंने आज के दिन इसे छुड़ा लिया है। और इसी तरह से परमेश्वर ने किया, अपनी ही व्यवस्था का पालन किया। परमेश्वर ऐसा पालन नहीं कर सकता कि आपको एक व्यवस्था का पालन करने के लिए दे और वो दूसरे का पालन करे, वो अपने स्वयं की व्यवस्था का पालन करता है। तब परमेश्वर खोई हुई कलीसिया, खोया हुआ संसार, खोई हुई सृष्टि को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर जो आत्मा में अनंत है, खोई हुई मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं निकट कुटुंबी बन गया, एक मनुष्य, एक पुत्र बन गया, जिसे उसने मरियम के गर्भ में सृष्टि की, और फिर उसने एक चिन्ह को बनाया या गवाही बनाई यरूशलेम के फाटकों के बाहर, वो आकाश और धरती के बीच में ऊपर उठाया गया और मरा और हर एक चीज को छुड़ा लिया, और बहते हुए लहू में उसने एक कलीसिया को पवित्र किया जिसमें वह खुद रह सके और संगति कर सके और बातचीत कर सके। अदन की वाटिका से संगति का वह खोया हुआ स्थान जहाँ परमेश्वर हर एक संध्या को कलीसिया के समय नीचे आता था, क्या आपने ध्यान दिया, दिन की ठंडक में सूर्य के अस्त होने पर परमेश्वर नीचे उतर आया, वहाँ कुछ तो बात होती है। जब रात होने लगती है, लोग कलीसिया और परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। मसीही लोग, आप सूर्य को अस्त होते हुए देखते हैं। आप इस बात को समझने लगते हैं कि आपका सूर्य अस्त हो रहा है। और संध्या की ठंडक में वह नीचे आकर और उनके साथ बातचीत करता, और वहाँ उसने उस संगति को खो दिया, क्योंकि पाप उसे ऐसा नहीं करने देगा। और उसके बाद वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया व्यवस्थित रूप से, कि मनुष्य के पास फिर से आकर और मनुष्य के अंदर रहे और एक मनुष्य को उसके साथ फिर से बातचीत करने की अवस्था में लौटाए और उसे उसके परमेश्वर के दिए गए अधिकार को वापस दे दे जो उसने किया। यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। यह फिर से पिता है, परमेश्वर पिता आप में वास कर रहा है, उसकी योजनाओं के कार्य को करते हुए, ताकि अपने छुटकारे की योजना को पूरा करे। आप में से होते हुए कार्य को कर रहा है, आपको उसके साथ सह कार्यकर्ता बनाते हुए आपको एक स्थान देता है, आपको एक कर्तव्य देता है, आपके गिरे हुए भाइयों और बहनों के लिए, आपको अपनी आत्मा और प्रेम देता है, ताकि खोए हुए की तलाश करे, जैसा उसने अदन की वाटिका में किया था, आदम आदम तू कहाँ है। यही है जो पवित्र आत्मा पुरुष या स्त्री के साथ करता है, जब ये उनके हृदय में प्रभावित करता है और उसके स्थान को लेता है। वहाँ खोए हुए प्राणों के लिए प्यास और भूख होती है। यही है जो आज की सभाओं के साथ मामला है। इसमें खोए हुए और मरते हुए प्राणों के पीछे जाने के लिए न ही बहुत ज्यादा आत्मा का स्पर्श होता है। प्राणों को जीतने वाले कार्यक्रम के बजाय उनके नाम को करते हैं, या कलीसिया बनाते हैं, या इमारत बनाते हैं, या एक संप्रदाय बनाते हैं, ऐसा अधिक होता है। कितनी दयनीय बात है, हम इस बात पर बहुत देर बने रह सकते हैं। परमेश्वर ने स्वयं को मसीह में उंडेल दिया। सही बात है, मसीह ने खुद को कलीसिया में उंडेल दिया।
You will know that I am in the Father.
इसलिए अब देखो, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। उस दिन तुम जानोगे, क्योंकि ये संपूर्ण बात नीचे आती हुई छुटकारे की एक योजना है, कि परमेश्वर अपने लोगों में रहने के लिए वापस आ रहा है और उनके साथ रहने के लिए और उसके लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, जैसा कि उसने आरंभ में किया था। अब उसके बाद जैसे ही वो अपनी कलीसिया को बोलने की स्थिति में पाता है, उसकी कलीसिया को एक ऐसे स्थान पर लाता है जहाँ से होकर वह खुद को प्रवाहित कर सके और प्रेम कर सके और विश्वास दिला सके और संगति कर सके। उसके बाद वहाँ एक अदन आ जाएगा, वो अपनी कलीसिया को वापस वहीं ले जाएगा जहाँ पर इसने उसे छोड़ दिया था, फिर से एक अदन में वापस जहाँ से ये गिरी। ये अब यहीं से इसने उसकी पहली शुरुआत की या गिरी, वहाँ पर वो स्थान है जहाँ इसे वापस ले लिया जाएगा। इसे छुटकारे की हर एक साफ पटिया के साथ उन्हें फिर से सीधे उस स्थान पर वापस लाते हुए। कलीसिया कुछ समय के लिए संसार में रही है और कलीसिया वास्तव में सुधार के बाद 1500 वर्ष के अंधेरे युगों के प्रेरितों के दौर के बाद लूथर आगे आने वाला पहला सुधारक था। और फिर जब लूथर आगे आता है, परमेश्वर ने आत्मा को थोड़ा सा ऊपर उठाया और इसे कलीसिया के ऊपर उंडेल दिया धर्मीकरण में। और उसके बाद वेस्ली के दिनों में उसने अपने आप में से थोड़ा और उंडेल दिया पवित्रीकरण के अंदर। और जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, अंत समय की ओर परमेश्वर अपनी कलीसिया को भरता जा रहा है। बस पीछे की ओर देखें और पता लगाएं कि क्या यह सच है या नहीं। लूथरन युग की ओर देखें, आप जो इतिहास को पढ़ते हैं उनके बेदारी को देखें और उन्होंने क्या किया। वेस्ली की बेदारी की ओर देखें कि यह कितनी बढ़कर थी, उनके पास कितनी अधिक सामर्थ्य थी, लेकिन वे संख्या में कम लोग थे। पेंटिकॉस्ट के दिनों में देखो, उस वक्त उनकी क्या ही बेदारी हुई थी, क्या ही महान पूरी तरह से फैल रही थी। वैसे ही आवर संडे विजिटर्स कैथोलिक अखबार भी इस बात को अंगीकार करता है कि पेंटिकॉस्टल ने एक वर्ष में 15 लाख परिवर्तन किए, आगे का सब बाकी की कलीसियाओं ने एक साथ किया। कैथोलिक केवल बदल गए, दावा करते हैं 10 लाख उनके स्वयं के संडे विजिटर में। संडे विजिटर नामक अखबार ने इस बयान को दिया कि पेंटिकॉस्टल उनसे आगे निकल गए हैं। और याद रखें, पेंटिकॉस्टल रूपांतरण पवित्र आत्मा से भरा हुआ रूपांतरण है। कुछ ही संख्या में आरंभ किया वहाँ गली के किनारे पर एक पुराने गिटार के साथ, और वे महिलाएं एक जोड़ी मोजे भी नहीं खरीद सकती थी। रेल की पटरियों पर लेटे रहते और मकई को उठाते और इसे मसल कर और उनके बच्चों के लिए रोटी बनाते। लेकिन इससे क्या आया? आज संसार में की सबसे शक्तिशाली खड़ी हुई कलीसिया है, न ही संसार की दृष्टि में लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि वो जो कुछ उनके लिए कर रहा है उसके द्वारा वो प्रमाणित करता है। वो अपने आप को उनमें उढ़ेल रहा है, उनमें उढ़ेलते हुए। अब ध्यान दें कि क्या बात ने जगह ली, परमेश्वर ने स्वयं को उनमें उढ़ेल दिया। अब कलीसिया एक स्थान पर पहुंच गई है, लूथर से वेस्ली और बेदारी पेंटिकॉस्ट की ओर आगे बढ़ रही थी। और अब इस युग में जिसमें हम अभी आ रहे हैं, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, बस इससे और भी अधिक है। अब जब वे लूथरन वहाँ पीछे बचाए गए तो उन्हें पवित्र आत्मा का कुछ भाग मिला। जब मेथोडिस्ट का पवित्रीकरण हुआ तो वो पवित्र आत्मा का कार्य था। देखिए, यह पवित्र आत्मा का एक भाग था। वे हमारे बिना सिद्ध नहीं बनते हैं, वचन कहता है। देखा, अब परमेश्वर जैसा कि अंत के दिनों में उजाला चमकने लगा है, वह हमसे अपेक्षा कर रहा है, हमसे एक महान चीज की अपेक्षा कर रहा है, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा दिया जाता है वहां से बहुत ज्यादा मांग होती है। इसलिए वो लूथरन या मेथोडिस्टों की अपेक्षा हम में से बहुत अधिक की मांग करेगा, क्योंकि हम एक और अधिक उजाले में चल रहे हैं, एक और अधिक सामर्थ्य के साथ, एक बड़े, एक और ज्यादा गवाही के साथ जो उनके पास थी उससे बढ़कर। अब हमारे पास पुनरुत्थान का एक बड़ा गवाह है, हमारे पास अधिक दृढ़ चीजें हैं जो उनके पास थी उनसे अधिक निश्चित। लेकिन यह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले लूथरन कॉलेज में कहा था। उन्होंने कहा, हमें क्या मिला है? मैंने कहा था, एक मनुष्य ने मकई के खेत को बोया, पहले छोटा सा अंकुर ऊपर आता है और उसने कहा, एक मकई की फसल के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। संभावित रूप से उसके पास ये थी, लेकिन उसके पास केवल प्रारंभिक रूप में थी। धीरे धीरे करके यह एक डंठल बन जाता है और उस पर एक लटकन निकलती है जो मेथोडिस्ट था। यदि आप प्रकृति को देखेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर कार्य कर रहा है। वहाँ एक रहस्य रखा हुआ है जो यहाँ तक मेरे सेवकाई के साथ भी जाता है। देखा कि प्रकृति को देखते हुए देखें कि ये कैसे करता है, कौन से युग और किस समय आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, युग को देखें। अब उसके बाद मेथोडिस्ट वे टहनी थे, उन्होंने पीछे लूथरन की ओर देखा और कहा, हमारे पास पवित्रीकरण है, तुम्हारे पास इसमें का कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उस पराग से मेथोडिस्ट से एक दाना निकलता है, मके की एक गुटली, वो पेंटिकॉस्ट था। आप वहाँ हैं, धर्मीकरण इसमें का एक चरण, पवित्रीकरण इसमें का दूसरा चरण, पवित्र आत्मा इसमें का एक और चरण, पेंटिकॉस्ट, लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्ट। अब पेंटिकॉस्ट क्या करता है? मैं इसे पसंद करता हूँ क्योंकि पेंटिकॉस्ट में इसने वापस लाया न ही एक हरी पत्ती, न ही एक लटकन, लेकिन मकई लटकन से नहीं कह सकती, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, या लटकन उस पत्ते से नहीं कह सकती, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही जीवन जो पत्ती में था उसने लटकन को बनाया, वही जीवन जो लटकन में था उसने गुठली को बनाया। और यह लूथरन कलीसिया थी जिसने वेस्ली कलीसिया बनाया, यह वेस्ली कलीसिया थी जिसने पेंटिकॉस्ट बनाया। लेकिन पेंटिकॉस्ट ये क्या है? यह उसी तरह के दाने का लौटाया जाना है जो शुरुआत में जमीन में चला गया था। पेंटिकॉस्ट की सामर्थ्य की संपूर्णता को लौटाते हुए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा, देखो अंत के दिनों में। ओह, यह एक बहुत अच्छी बात है। इसे देखना, विश्वास करना और इसकी ओर देखना। अब इस युग में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, यह युग ये पेंटिकॉस के आगे है। पेंटिकॉस खुद को संगठनों में स्थापित कर चुका है और संगठनों के विषय में बहुत कुछ दिखावटीपन आरंभ कर दिया है। हम ये हैं और हम वो हैं, बस यही स्वभाव है। आप बस इसके लिए सहायता नहीं कर सकते, यह स्वभाव है। वे ऐसा करेंगे, यह उनके लिए योजना है कि ऐसा करें, लेकिन कलीसिया आगे बढ़ चुकी है। यह और अधिक महानता, अधिक शक्तिशाली में बढ़ चुकी है। यह दानों का लौटाया जाना है और बहुत से पेंटिकॉस्टल लोग दैविक चंगाई में, दूतों की सेवकाई और परमेश्वर की सामर्थ्यों में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से पेंटिकॉस्टल इन दर्शनों को, जिन्हें मैं देखता हूँ, वे शैतान कहते हैं। पेंटिकॉस्ट में बहुत से संगठन का यहाँ तक इससे कोई लेना देना भी नहीं होता है। देखिए, हम इससे आगे निकल गए हैं, जैसे कि मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल को पागल कहकर बुलाते हैं क्योंकि वे अन्य भाषा में बोलते हैं, जैसे कि लूथरन मेथोडिस्ट को पागल कहते हैं उनके चिल्लाने के कारण, समझे। लेकिन यह सब आगे उस पवित्र आत्मा का आना है, जब तक कि वो महान कलीसिया पूरा भर नहीं जाती है और पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। हालेलुया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महान सामर्थ्यों से, जब तक यह एक स्थान तक नहीं पहुंच जाती, जब तक कि वही काम जो यीशु के द्वारा हुए, ये अब ठीक कलीसिया में स्वयं प्रकटीकरण में नहीं होने लगते हैं। हम नजदीक है मित्रों, मुझे यहाँ एक मिनट के लिए रुकने दें, इस बात को लेने के लिए कि परमेश्वर ने कलीसिया में पवित्र आत्मा को किस लिए रखा है। आपको एक और नमूना दूंगा ताकि आप जान सकें। पहले पुराने नियम में जब एक बालक, एक मनुष्य ने खुद के लिए घर बनाया, उसे उसकी दुल्हन मिलती है, यही वो पहली बात है। उसके बाद वो एक संगठन की तरह एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, ये अच्छी बात थी। जो अगली बात जो होती है, उस घर के अंदर एक जन्म होता है, यही है जब पवित्र आत्मा, देखो एक और आत्मा आई जो एक पुत्र था। यह पुत्र वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं था, न ही वो एक वारिस था, जब तक वो एक निश्चित उम्र तक नहीं पहुंच जाता है, और पहले उसे साबित होना था। जी हाँ, और उसके बाद उनके पास लेपालकपन का नियम होता था, अब सेवकों के लिए पुत्र को स्थान पर रखा जाना है, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ। देखो, उसके बाद जब वह उस स्थान पर आता है जहाँ उसका लेपालकपन किया जाता था, रूपांतर के पहाड़ पर यीशु ने इसका सुंदर उदाहरण दिया। जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर कभी भी कुछ करने के लिए अपनी व्यवस्था से बाहर नहीं जाएगा। यदि आपके पास इस पहाड़ी पर एक उमड़ता हुआ कुआ होता है जो यहाँ वहाँ हवा में पानी को उछालता है, और यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर आपकी फसल पक रही है, आप इस पहाड़ी पर खड़े होकर और जोर से चिल्ला सकते हैं, ओ पानी यहाँ इधर की ओर बहो और मेरी फसल को भर दो, ओ पानी मेरी फसल में आ जाओ, ये ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन यदि आप चुंबकीय खींचने की शक्ति के नियमों के अनुसार काम करेंगे तो आप उस फसल को पानी दे सकते हैं। आपके पास यहाँ एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है, या एक पापी यहाँ पड़ा हुआ है, या एक मनुष्य जो ठीक होना चाहता है, जो शराब नहीं छोड़ सकता, धूम्रपान नहीं छोड़ सकता, अभिलाषा और चीजों को नहीं छोड़ सकता। यदि आप केवल परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा को उसमें आने देते हैं, उसके बाद वो अब और अपने खुद के लिए नहीं रहता है, वो उस बात को करना रोक देगा क्योंकि पवित्र आत्मा उसे अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन आपको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार काम करना है, परमेश्वर के नियमों के अनुसार। अब पुराने नियम में जब इस बालक का जन्म होता था तो वे इसे देखते, यह देखने के लिए कि इसका आचरण कैसा था, व्यवहार कैसा है। उसके बाद पिता इस समय तक एक बड़े व्यवसायी होने के नाते, हो सकता है वो उसके 40 या 50 वर्ष की उम्र में हो, उसके पास खुद इस बालक को पढ़ाने का समय नहीं होता है, इसलिए उसने उन दिनों में, उनके पास आम जनता के लिए विद्यालय नहीं होते थे जैसा कि अब उनके पास है, इसलिए उनके पास जो होते थे वे उसे निजी शिक्षक या पालने वाला कहते थे, विद्यालय का शिक्षक। और यह विद्यालय का शिक्षक जो उसे अच्छा मिल सकता था, ताकि वह सच्चाई से भरा हो और पिता को इसके बारे में सच्चाई बताए। और उसके बाद जब यह लड़का एक निश्चित उम्र का हो जाता, कहीं तो वो परिपक्व हो जाता था, यदि वह लड़का बस एक पाखंडी था, अच्छा नहीं था, पिता के व्यवसाय की परवाह नहीं करता था, वह केवल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी और घूमना फिरने के बारे में सोचता था, या शराब पीना, या जुआ खेलना, या घुड़दौड़ करना, वह लड़का हमेशा ही एक बेटा होगा, लेकिन उसे कभी भी उसके उपयुक्त स्थान में नहीं रखा जाता था, जिससे कि वो अपने पिता का सारा उत्तराधिकारी बने। लेकिन यदि वो एक अच्छा लड़का होता था और वो पिता के व्यवसाय को लेने पर होता था और वह सही बालक होने को प्रमाणित होता, उसके बाद उनके पास एक समारोह होता था। वे लड़के को बाहर रास्ते में ले जाते और उसे एक सफेद वस्त्र को पहनाते और वे उसे एक ऊपर मचान पर बैठाते जिससे कि सारा शहर देख सके। वे भोज को रखते और जुबली मनाते और पिता के पास तब लेपालकपन करने का समारोह होता था। वो अपने पुत्र को उसके अपने व्यवसाय में लेपालकपन करता और उसके बाद पुत्र उसके पिता के साथ समानाधिकारी था। दूसरे शब्दों में, यदि आज ऐसा होता तो चेक पर पुत्र का नाम लगभग पिता की तरह ही होता था। आप देखिए परमेश्वर ने क्या किया। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ था तो उसने उसे 30 वर्ष तक बढ़ने दिया, उसे परखते हुए और उसकी परीक्षा करते हुए। उसके बाद वो उसे 3 वर्ष की कठिन परीक्षा देता है और फिर कठिन परीक्षा के अंत में जब उसने देखा कि उसका पुत्र पिता के व्यवसाय को करने पर था, रूपांतर के पहाड़ पर लुका की किताब, उसने 3 गवाहों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और वे ऊपर पहाड़ की चोटी पर चले गए और वहां परमेश्वर ने लेपालकपन की व्यवस्था को पूरा किया। उन्होंने ऊपर की ओर देखा और उन्होंने यीशु को देखा और उसके वस्त्र प्रकाश की तरह सफेद चमक रहे थे। और जैसे बादल उस पर छा गया और बादल में से एक आवाज आई और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं अब बैठ जाऊंगा और मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं होगा, वो जो कहता है वही नियम और सत्य है। अब कलीसिया उन स्कूलों में से होती हुई आई है। उसने बहुत समय पहले कहीं और विवाह किया और एक संप्रदाय, एक संगठन बन गई। लेकिन आप ध्यान दें, जन्म ने कुछ और ही उत्पन्न किया और अब यह उस ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां नए जन्म के साथ पेंटिकॉस्टल कलीसिया को परखा गया है और परीक्षा ली गई है और अब यह एक स्थान पर आ रही है। परमेश्वर तब एक संगठन के रूप में कलीसिया के साथ व्यवहार नहीं करता है, वो कलीसिया के साथ एक लोगों के झुंड की नाई व्यवहार नहीं करता है, वो कलीसिया के साथ एक व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है, कलीसिया में हर एक व्यक्तिगत। और अब समय आ गया है और यह कोई रहस्य नहीं है, हम सब इसे देखते हैं। जब एक मनुष्य साबित करता है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है तो वो उसे खुद के लिए कहीं तो बाहर ले जाता है, वहाँ दूतों के सामने वह उसके लिए कुछ तो करता है, वह उसे वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर उठाता है और उसे दानों को देता है और उसे भरता है और उसे बाहर भेजता है। यही वो युग है जिसमें हम रह रहे हैं, वही पवित्र आत्मा जिसने लूथरन को बचाया, जिसने मेथोडिस्ट का पवित्रीकरण किया, जिसने पेंटिकॉस्टल को बपतिस्मा दिया, अब प्रभु यीशु के आगमन के क्रम में स्थापित कर रहा है। जब ये बहुत अधिक सामर्थ्य से भरा होगा, वो देह जो इस झुंड के अंदर आ जाएगी, एक कलीसिया जो बाकी को कब्र में से बाहर खींच लेगी, वहाँ एक पुनरुत्थान होगा। इसी बात के लिए वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या है? हमारे बिना वे सिद्ध नहीं बन सकते हैं। वे उसी के नीचे उस दिन में रह रहे थे, हम दूसरे दिन में रहते हैं। जब शत्रु बाढ़ की नाई आएगा तो मैं परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध दर्जे को ऊंचा करेगा। देखा, हम अब एक दिन में हैं। वहाँ पहले वे आज की तरह आधे भी होशियार नहीं थे, वे परमाणु बम या मोटर गाड़ी नहीं बना सकते थे, उनके पास विज्ञान और चीजें नहीं थी जैसा कि अभी हमारे पास है। लेकिन और रहस्यमय चीजों की बातें, यह कहने की कोशिश करना कि मनुष्य कुछ मिट्टी और इत्यादि से उड़कर एकत्र हो गया और कुछ विश्लेषण को लेते हैं और इसे साबित करने की कोशिश करते हैं लोगों को अविश्वासी बनाने के लिए। लेकिन अब जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो परमेश्वर का आत्मा एक दर्जे को ऊंचा उठाता है। यह क्या है? वह अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। तब जो लोग उस और कब्र में या परमेश्वर की वेदी के नीचे विश्राम कर रहे हैं, जैसा कि वचन कहता है, वे चिल्ला रहे हैं, कब तक प्रभु, कब तक और कब तक? परमेश्वर आपके और मेरे लिए रुका हुआ है, कलीसिया आपके और मेरे लिए रुकी हुई है। ले पालकपन का समय जब परमेश्वर अपनी संपूर्णता को, अपनी सामर्थ को, अपने पुनरुत्थान को हम में उंडेल सकता है। कि जब कलीसिया और मसीह एक दूसरे के इतने निकट हो जाते हैं, इतना तक कि मसीह हमारे बीच में दिखाई देने लगता है और मुर्दों को जिलाता है और हम रैप्चर में चले जाते हैं। अब हम जो कहने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कि बस उनके लिए है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उस रैप्चर में जाते हैं। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये सही है, केवल पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ही सारे रैप्चर में चले जाते थे। अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। मेरे पास एक और वचन है, यूहन्ना 14:12 में। यह एक बहुत ही परिचित वचन है, यहाँ के सभी लोग जानते हैं जो इस भवन में हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, अब उस शब्द को छोड़ना मत, विश्वास करता है एक प्रकार से आपको वापस दृढ़ करने के लिए। नाम मात्र कलीसिया में कहते हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, निश्चय ही मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। शैतान भी इसी बात को विश्वास करता है, ठीक ऐसा ही है, बाइबल ने कहा कि वो करता है। लेकिन वचन कहता है, यूहन्ना में कहता है कि कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही कह सकता है। आपने असल में वचन के द्वारा, मैं यहाँ एक मिनट रुकूंगा इससे पहले कि मैं पढ़ना समाप्त करूं, तब तक आप परिवर्तित नहीं होते हैं जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पा लेते हैं। ये सही बात है, आप यह होने तक विश्वास कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है और आपने उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। शैतान के पास वही चीज है, मैं उसे परमेश्वर का पुत्र होने का विश्वास करता हूँ, वैसे ही शैतान करता है, लेकिन आप उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बुलाया गया और धर्मी ठहराया गया था, और यूहन्ना 17:17 में यीशु ने उन्हें वचन में से होते हुए पवित्र किया, क्योंकि वचन ही सत्य था और वो वचन था। पहला यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। वो वचन था, इसलिए उसने उन्हें पवित्र किया। उसने कहा, पिता, उसमें आत्मा से बातें कर रहा था, मैं उन्हें वचन के द्वारा पवित्र करता हूँ, स्वयं उन पर हाथ रखने के द्वारा। तेरा वचन सत्य है, बस मात्र उसे अस्तित्व में बोला एक महिला के गर्भ में। ओह, उसके लिए पूरी तरह से असंभव था परमेश्वर के इस वचन के अलावा किसी अन्य तरीके से उसे प्रकट में लाना। मैं उन्हें पवित्र करता हूँ, उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं से विरुद्ध सामर्थ्य को दिया, वे बाहर चले गए, उसने उनके नाम को मेमने की जीवन की पुस्तक में डाला था और उसने उन्हें बाहर भेजा, यूहन्ना मत्ती 10, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर सामर्थ को दिया, वे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और कामों को कर रहे थे और इत्यादि, और वे आनंदित होकर वापस लौटे और कहा, इतना तक शैतान भी हमारे अधीन है। उसने कहा, आनंद मत मनाओ क्योंकि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, लेकिन आनंद करो क्योंकि तुम्हारे नाम किताब में है। और यहूदा उनके साथ था। देखो कि वो कितना नजदीक आ सकता है, धर्मीकरण में से होते हुए आगे की ओर सीधे पवित्रीकरण की ओर बढ़ता है, लेकिन उसने अपने दृष्टिकोण को कहाँ दिखाया, उसने अपने आप को कहाँ दिखाया, पेंटिकॉस्ट से पहले उसने अपने रंग दिखाए। देखो वो आत्मा उतनी ही धार्मिक और उतनी ही धार्मिकता की दिखावटी होगी जितनी ये हो सकती है, जब तक कि ये पवित्र आत्मा तक न आ जाए और वे इसे ठीक वहीं पर अलग कर देंगे। यही वो आत्मा है, क्या आप इसे नहीं देख सकते हैं, ऊपर की ओर बढ़ रही है, मसीह विरोधी। और यीशु ने कहा, वे अंत के दिनों में एक साथ इतने नजदीक होंगे, यदि संभव हो तो ये बिल्कुल चुने हुए लोगों को भी भरमा देगा, लेकिन याद रखें, ये केवल चुने हुए लोग हैं जो इसे देखेंगे। परमेश्वर आपको चुने जाने के द्वारा बुलाता है। आप क्या आप खुश नहीं हैं कि आप उनमें से एक हैं? क्या आप नहीं हैं? आज रात यहाँ लोग हैं ये जानते हुए कि आपके हृदय में कुछ तो खींच रहा है, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, मैं आपको चाहता हूँ प्रभु मेरे हृदय में। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने जगत की बुनियाद डालने से पहले आपके नाम को मेमने की जीवन की किताब में रखा है, ऐसा उसने कहा। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु ने कहा, जब तक मेरा पिता उसे पहले खींच न ले, और जो कोई मेरे पास आता है मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन क्या है? पवित्र आत्मा। अनंत जीवन, उस शब्द को लें और उसे यूनानी भाषा में जारी करके देखें, और ये कहता है जोई जोई पवित्र आत्मा है। जिस किसी को पिता ने मुझे दिया है वह सब मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे पवित्र आत्मा दूंगा और मैं उसे अंतिम दिन में उठा खड़ा करूंगा, मैं इसे करूंगा। उसने कहा, ना ही इसके बारे में नहीं, यदि और कुछ है मैं करूंगा। ये सब जो आता है मैं अनंत जीवन देता हूँ, उसे ऊपर आना होगा क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है, उसे आना ही है। अब वो और नहीं मर सकता क्योंकि परमेश्वर नहीं मर सकता है। ओ इस देश के और इस छोटे से शहर के मेरे प्यारे मित्रों, यदि मैं केवल अपनी मानवीय आवाज के द्वारा आपके हृदय में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के महत्व को बता सकता, तो यह आपके जीवन में अब तक का सबसे अद्भुत प्रकाशन होता था, देखने के लिए कि क्या आपको अवश्य करना होगा। मैं इसके बारे में साफ कर दूं, आप परिवर्तित नहीं हुए हैं। पतरस को बचा लिया गया था, वो प्रभु पर विश्वास करता था, उसका अनुसरण करता था। यीशु ने उसे बताया कि वह कौन था, उसे उसका अनुसरण करना था। उसने उसे अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध सामर्थ्य दी और उसे पवित्र किया। लेकिन उस सब के बाद और झुंड के मुख्य बोलने वाले व्यक्ता बने, जैसा कि कैथोलिक इसे बुलाना चाहते हैं, कलीसिया का बिशप या पोप या ये जो कोई भी थे, कलीसिया का प्रमुख। फिर भी यीशु ने कहा उसके धोखे की रात को, क्या तू मुझसे प्रेम करता है पतरस? और उसने कहा, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कहा, मेरी भेड़ों को चरा। उसने ऐसा तीन बार कहा, और पतरस ने कहा, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इतना तक मैं उस अंत तक तेरे साथ जाऊंगा और मैं तेरे साथ मृत्यु तक जाऊंगा इत्यादि। उसने कहा, इससे पहले कि मुर्गा तीन बार बांग दे, तू मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मुझे तीन बार इनकार करोगे। उसने कहा, लेकिन पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, सुनना, इतना ही नहीं, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, और जब तुम परिवर्तित हो जाओ तब अपने भाइयों को दृढ़ करना। तुम्हारे परिवर्तित होने के बाद वह चिल्ला उठा था, उसने संभवत है आत्मा में नाचा था, उसने सब तरह के काम किए थे, लेकिन उसने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। तुम्हारे परिवर्तित होने के बाद अपने भाइयों को दृढ़ करना, यह सच है, उसकी योजना को पूरा करना। अब मैं यूहन्ना 14:12 को पढ़ना समाप्त करता हूँ। अब 14वें अध्याय और 12वें पद में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो जो विश्वास करता है और आप विश्वास नहीं कर सकते, मुझ पर विश्वास करता है आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। कितने लोग इसे समझते हैं? कहें आमीन। आपको याद है प्रेरितों के काम 19 में, मैं इसे यहाँ रोकने को नापसंद करता हूँ, लेकिन मुझे बस इसे वैसे ही कहना होता है जैसे यह मेरे पास आता है। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय, जब यह बैप्टिस्ट प्रचारक, जो कि एक वकील था और परिवर्तित हुआ था, और वो प्रचार कर रहा था और लोगों को बचा रहा था, और उनके पास बहुत आनंद था, बस आनंद मना रहे थे और चिल्ला रहे थे, एक सभा को कर रहे थे। प्रेरितों के काम 18, अकिल्ला और प्रिस्किल्ला, हमने कल शाम को इसका उल्लेख किया था, और वे उससे मिलने गए थे, और वे जानते थे कि वो एक महान पुरुष था और वो एक विद्यार्थी था, और वो बाइबल के द्वारा साबित कर रहा था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। केवल यूहन्ना के बपतिस्मे को जानता था, वह अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं जानता था। इसलिए उसने कहा, अकिल्ला और प्रिस्किल्ला, वह पति और पत्नी, छोटे तंबू को बनाने वाले, जो कि पौलुस भी एक तंबू बनाने वाला था, और उन्होंने पौलुस की शिक्षा के नीचे पवित्र आत्मा को पाया था। उन्होंने कहा, हमारा एक छोटा भाई है जो कि यहाँ पर आ रहा है, वो इसके बारे में हमसे थोड़ी बहुत बात करे। और जब पौलुस ने आकर उसे प्रचार करते सुना तो जान गया कि वो एक महान पुरुष है। उसने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते हैं, क्या कोई पवित्र आत्मा भी है? उसने कहा, फिर किस लिए? या वास्तव में यूनानी शब्द है, तुमने कैसे बपतिस्मा लिया था? उन्होंने कहा, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हैं। अब देखिए पौलुस ने क्या कहा। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने सचमुच मन फिराव का बपतिस्मा दिया, पापों की क्षमा के लिए नहीं, लेकिन पश्चाताप के लिए। यह कहते हुए, यही है जो तुमने विश्वास किया। जब आप मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार करते हो तो आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के निमित्त विश्वास कर रहे होते हैं। मेरे प्रिय बैप्टिस्ट भाइयों, यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, यह गलत है। एक दिन एक भाई ने मुझसे कहा भाई ब्रैनम, मतलब कुछ समय पहले, महीनों पहले की बात है, उसने कहा, भाई ब्रैनम, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया धार्मिकता के लिए, ये उसके निमित्त आरोप लगाया गया था। मैंने कहा, सच है? कहा, एक मनुष्य विश्वास करने से ज्यादा और क्या कर सकता है? मैंने कहा, यही सब एक मनुष्य कर सकता है। वो आज इतना ही सब कर सकता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे। लेकिन परमेश्वर ने उसे खतने की मुहर दी। कल रात को हमने ये सब बताया था, एक चिन्ह की नाई कि उसने उस पर उसके विश्वास को स्वीकार किया था। और आज जब तक परमेश्वर आप उस पर विश्वास करते हैं, जब आप उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की मोहर देता है तो उसने आपको आपके अनंत मंजिल के लिए मोहर कर दिया। अब आप जो बैप्टिस्ट हैं, इसे ले लें और मैं आपके साथ अनंत सुरक्षा पर जाऊंगा। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक मोहर दी गई है। आप उसके निमित्त विश्वास करने के द्वारा मोहर बंद नहीं होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर होते हैं। इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक मोहर दी गई है, यह आपको मोहर करता है। जब आप पर परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं और उसने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर किया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल ने कहा है, कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही। आप कहते हैं, मैं इसे विश्वास करता हूं क्योंकि पास्टर ऐसा कहता है, वो सही है, लेकिन ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। मैं इसे विश्वास करता हूं क्योंकि वचन ऐसा कहता है, ये सही है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। एकमात्र तरीका जिससे आप कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और गवाही को देता है और स्वयं गवाही को देता है, वो परमेश्वर का पुत्र है। पुनरुत्थान को जानने का यही एकमात्र जरिया है, जब पवित्र आत्मा गवाही को देता है। जब वो पवित्र आत्मा आता है तो वो मेरी गवाही को देगा और आपको आने वाली बातें दिखाएगा, इन बातों को लाएगा जो मैंने कहा, आपको याद दिलाएगा। आप इन बातों को स्कूल में कभी नहीं पाएंगे, देखा, वो इन बातों को आपको याद दिलाएगा। अब हम इस वचन में थोड़ा और आगे पढ़ना चाहते हैं, संत यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यह काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और बढ़कर, जो कि सही अनुवाद है, अधिक, यदि आप इसे देखना चाहते हैं, वह इनसे भी बढ़कर काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यदि वो पिता के पास गया तो पवित्र आत्मा आएगा, क्या यह सही है? एक और वचन ने कहा, यदि मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ तो वो सहायक नहीं आएगा, लेकिन यदि मैं चला जाऊँ तो मैं फिर से आऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा, यहाँ तक कि तुम में रहूँगा। देखो, ये परमेश्वर आपके साथ है, पहले आपके ऊपर, आपके साथ, मसीह में, आप में, पवित्र आत्मा में, यह आप में परमेश्वर है। अब जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, ना ही दूसरा काम, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा को आप में लाना चाहता है ताकि वह उसी कार्य को जारी रखे जिसे वो मसीह में कर रहा था। लूथर के दिनों में काम इतना आवश्यकता में नहीं था, यह परमेश्वर की कलीसिया थी, ऐसा नहीं था। वेस्ली के दिनों में थोड़ा सा ज्यादा आवश्यकता में था, क्योंकि संसार, बाइबल ने कहा, हर समय निर्बल और बुद्धिमान और अधिक दुष्ट होता चला जाएगा। हम संसार और अधिक दुष्ट होता जा रहा है, हम यह जानते हैं, क्योंकि मनुष्य आज उन कामों को करता है जो 100 वर्ष पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई मनुष्य इतना निर्दयी होगा। हर समय अधिक दुष्ट होता चला गया और दुष्ट हर समय और दुष्टता को करेगा, वचन ने कहा, अधिक और अधिक। वैसे ही पवित्र आत्मा आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर लूथर से इसकी जरा सी सांस थी, वेस्ली से इसका एक जरा सा झोंका, और पेंटिकॉस्ट से इसका और गहरा झोंका। अब सांस और आत्मा एक बन चुके हैं, वो एक साथ एकजुट हो रही है, पवित्र आत्मा के उसी सामर्थ्य से भरे जोखे को आगे ला रही है जैसे उसने वहाँ पहले किया था। ये उसी कामों का प्रकटीकरण होना है जो उसने वहाँ पहले किए थे। वही काम ठीक आज जाहिर हो रहे हैं, वही चीज। देखो यीशु ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो पिता को पहले इसे करते न देख ले। पिता जो करता है वो पुत्र को दिखाता है। पिता मुझ में वास करता है, वो कामों को करता है, समझे। अब ध्यान दें, मैं ठीक यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। जैसा यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही, अब देखो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने उसे कैसे भेजा, पिता जिसने उसे भेजा है स्वर्ग से नीचे उतर आया और उसमें वास किया। वो आगे बढ़ा, उसने कहा मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे पिता को भाता है, समझे। वह उन्हीं चीजों को करता चला गया जो पिता उसे करने के लिए दिखा रहा था। मैं कुछ नहीं करता जब तक मेरा पिता पहले मुझे नहीं दिखाता है। जिस परमेश्वर ने उसे भेजा वो उसके अंदर था, और जैसे पिता ने मुझे भेजा, जिस तरह से पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये क्या है, परमेश्वर आप में वही करते हुए, क्या उन्हीं कामों को। वही यीशु ने कहा, वो जो विश्वास करता है, वो जिसके पास मैं हूँ उसके अंदर पवित्र आत्मा, वो जो विश्वास करता है वो पहले से ही मेरे पुनरुत्थान का गवाह है, जानता है कि मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे मेरे वचन तुम में बने रहेंगे। अब आप कहते हो मैं यीशु में बना रहता हूँ लेकिन मैं दैविक चंगाई में पूरा विश्वास नहीं करता, ये दर्शाता है कि वो वहाँ पर नहीं है। मैं यीशु में विश्वास करता हूँ पर इस दिन के लिए पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करता। जैसे पवित्र आत्मा वहाँ पहले उनके पास था, यह दर्शाता है कि वो वहाँ पर नहीं है। पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोले गए हर एक शब्द का लेखा जोखा रखेगा। वो एक झूठा नहीं है, वह किसी से भी नहीं डरता या ना ही किसी संगठन से डरता है। वो किसी के लिए भी वापस नहीं ले लेगा। वह बोलता है और फिर वह उसके साथ बना रहता है। यदि उच्च और दूषित और शिक्षित या जैसा कि हम इसे कहते हैं धनी शासक करने वाले लोग, यदि वे इसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, तो परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा कर सकता है। वह अपराध करने वालों और अवैध व्यवसाय करने वालों और बाकी के हर एक जन को लेगा और इन्हें खड़ा करेगा। परमेश्वर ऐसा कर सकता है और वो ऐसा कर रहा है। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम की संतान को उत्पन्न करने में सक्षम है। कोई तो इसे करने जा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो तुम मांग लो, क्योंकि आप उसके वचन को मांग रहे हैं और उसका वचन जीवन है। इससे बोलो, यदि परमेश्वर ने इसे कहा है और आपको यकीन है कि उसने इसे कहा है, तो पवित्र आत्मा लेखा जोखा रखता है कि वचन सही है, तो आप वहाँ हो भाई। इसे बोले, ये वहाँ पर है। इस पहाड़ से कहो हट जा, अपने हृदय में संदेह न करें लेकिन विश्वास करें कि जो तुमने कहा है वो पूरा होगा। ये तुम नहीं जो बोल रहे हो लेकिन पिता जो तुम में रहता है वो बात कर रहा है। ये आप उस पर्वत से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पिता है जो आप में होता है उस पर्वत से बात कर रहा है। इसे हटना ही है, सारा आकाश और धरती टल जाएगा। उसने कहा लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मतलब मेरा वचन नहीं टलेगा। निश्चित रूप से यह नहीं टल सकता पिता। अब वो काम जो मैं करता हूँ, परमेश्वर अपनी कलीसिया में है ताकि अपने कामों को जारी रखे, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। अब वो इसे जानता था, वो जानता था कि ये नहीं होगा, इसे उस तरह से नहीं किया जा सकता है, सो दूसरे तरह से किया जा सकता है, इसलिए उसे भेजना ही था। पिता ने पुत्र को भेजा, जो कुछ है उसे उसमें डाल, पुत्र में है आप में, और वही काम जो उसने किए, वही काम जो अब यीशु ने किए, कलीसिया तुम भी करोगे। क्या आप परमेश्वर के काम को नहीं करना चाहेंगे? यीशु ने कहा यदि आप परमेश्वर के कार्य करना चाहते हैं तो मुझ पर विश्वास करो। आप उस पर कैसे विश्वास करते हैं? आप इसे तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आप तो वही कह रहे हैं जो किसी और ने कहा है। बाइबल ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ। अच्छी बात है। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ। पास्टर कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं पास्टर पर विश्वास करता हूँ। माँ कहती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूँ माँ। मेरा मित्र कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे मित्र। लेकिन केवल एक ही तरीका है कि मैं कह सकता हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जब पवित्र आत्मा अंदर आता है और अपने आप की गवाही देता है, तब मैं जान जाता हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र है। कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह कहकर नहीं बुला सकता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही। कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोलता है, यीशु को शापित नहीं कहता या कहे कि वो उस दिन कुछ तो और था और आज कुछ और। यह उसे कमजोर करता है और लड़खड़ाने को लगाता है। नहीं श्रीमान, वो कल आज और हमेशा एक सा है। कोई भी सच्चा आत्मा उसकी गवाही को देगा। तो ठीक है, अब उसने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। यूहन्ना 14:12। अब वही काम, ओह, वे कहते हैं कलीसिया आज बढ़कर काम को करती है। किस तरह से? उसने कहा, वो काम जो मैं करता हूँ। वे कहते हैं तो ठीक है, हमारे पास सारे संसार भर में मिशनरियां हैं, यह एक बढ़कर काम है। लेकिन उसने कहा, वो काम जो मैं करता हूँ। अब पहले उन कामों को करें, उसके बाद मिशनरियों के बारे में बात करें। आज यहाँ कुछ समय पहले एक मोहम्मदीन के बारे में बोल रहा था। उसने कहा, मोहम्मद मर चुका है, यह सही बात है, वो कब्र में है, लेकिन किसी दिन वो उठेगा। उसने कहा, यदि वो कब्र से ऊपर आता है तो 24 घंटे में इसे सारा संसार जान जाएगा। उसने कहा, तुम लोग कहते हो कि यीशु को जी उठे 2000 वर्ष हो गए हैं और एक तिहाई लोग इसे अभी तक नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इसके बारे में बौद्धिक दृष्टिकोण से बताया है, तुमने स्कूल या शिक्षा की दृष्टिकोण से बताया है। यदि ये सारी बड़ी परमेश्वर की कलीसिया कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को गिनाते हुए कुल मिलाकर सभी को पवित्र आत्मा मिला होता था, तो ये संसार मसीहत में मजबूत स्थापित होता, साम्यवाद जैसी चीज ही नहीं होती। वहाँ पर कलह या शत्रुता या तुच्छता या घृणा जैसी कोई चीज ही नहीं होती। यीशु अपने सिंहासन पर बैठा हुआ होता और हम परमेश्वर के स्वर्ग में से होकर चल फिर रहे होते, अनंत जीवन के साथ, हमेशा के लिए जीवित, पहले से ही पुनरुत्थित, एक नए शरीर में यहाँ वहाँ घूमते हुए, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बाल सफेद नहीं होते, कभी बीमार न होते, कभी भूख नहीं लगती, प्रभु के आनंद में चलते हुए, जानवरों के साथ बातें करते हुए, और ओह क्या ही दिन होता। लेकिन हमने वो सब कुछ किया है बजाय इसके जो उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर और सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार क्या करता है? केवल शब्द ही नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रमाण के जरिए से परमेश्वर के वचन को प्रकटीकरण में लाते हुए, ये सुसमाचार है, आप इसे नहीं कर सकते। अब यीशु ये जानता था कि उसे अपनी कलीसिया में रहना है, इसलिए वो जानता था कि हमारे पास बौद्धिक स्कूल होंगे और आप इसे बौद्धिक स्कूल में कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। वे इसके विरुद्ध होंगे क्योंकि वे सब यही जानते हैं कि किसी चतुर मनुष्य की शिक्षा है, वे तो किसी मत सिद्धांत या संप्रदाय जिसके द्वारा जीना चाहते हैं। सो वे आपको उसमें व्यवस्थित करेंगे और आपको उस समुदाय का सदस्य बना देंगे, और भाई आपके लिए मत सिद्धांत में से कुछ बातों का हवाला देते हैं जो ऐसा दिखाई देगा कि यह बिल्कुल सही था। महान पवित्र कलीसिया माँ, ये बहुत मार पड़ने पर खड़ी हुई थी, ये बहुत प्रहार होने पर खड़ी हुई थी। वैसे ही शैतान है, उसे वहाँ लगभग हर जगह से लात मारकर निकाला गया है और वो अभी भी उसी तरह करते जा रहा है। जी हाँ श्रीमान, ओह वे इसका हवाला देने की कोशिश करेंगे। तो यीशु जानता था कि वहाँ एक बड़ी बौद्धिक चाल को चला जाएगा, बिल्कुल जैसे वहाँ उसके दिनों में था। कटोरों और प्यालों को धोने में और कपड़ों को पहनना और ऊपर मुड़े हुए कालर और वो हर एक चीज जैसा उन्होंने किया, ये सारी भिन्न भिन्न बातें जिसे वे करेंगे। वो जानता था कि वे ऐसा करेंगे, इसलिए उसने कहा, अब केवल एक मिनट रुकना, अब मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए फिर से आ रहा हूँ। इसलिए उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा को भेजने का उद्देश्य लोगों के एक झुंड के जरिए से जारी रखना था, ताकि परमेश्वर को निरंतर संसार के लिए प्रकट करे। यह बिल्कुल ऐसा ही है, ना ही किसी मत सिद्धांत के द्वारा, ना ही किसी संप्रदाय के द्वारा, लेकिन उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा, उसके वचन को वास्तविक बनाने के द्वारा, उसकी प्रतिज्ञा को लेने के द्वारा और कुछ ही संख्या के लोगों के पक्ष में खड़े होते हुए और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए और काले आसमान को पीछे हटते हुए देखें और परमेश्वर की सामर्थ अंदर आकर और अधिकार में ले लेती है। आमीन। यही है जिसे वो चाहता है, यही है जिसके लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया था, यही है जिस उद्देश्य के लिए इसे भेजा है। हम जानते हैं कि अब ये क्या है और इसलिए उसने इसे भेजा है। इसलिए कोई अन्य लहू लोगों को पवित्र नहीं करेगा। मैं आपको पवित्र नहीं कर सकता और आप मुझे पवित्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं दोनों ही शारीरिक संबंध से जन्मे हैं। लेकिन यीशु का जन्म बिना शारीरिक संबंध से हुआ था, यह सही बात है। इसलिए उसका लहू पवित्र करने वाला था और परमेश्वर ने नीचे आकर एक शरीर बनाया, इसमें वास किया, उस लहू को इसे पवित्र करने के लिए बहाया, जिसने पूरी तरह से पाप और लज्जा के दोष को दूर कर दिया। तब विश्वास के जरिए से उसमें विश्वास करते हुए परमेश्वर सीधा नीचे उस मनुष्य शरीर में आता है, उस लहू के पवित्र करने के द्वारा। उसमें अब्राहम के बीज को विश्वास के द्वारा रखता है, यह विश्वास करने के लिए कि वो लहू आएगा, वो शुद्ध लहू जो उसके लहू के जैसे चमत्कार होगा। उसके बाद वहाँ चला गया, वो लगभग मरे हुए के समान था। 25 वर्ष तक परमेश्वर पर विश्वास किया, वो 75 वर्ष का था और उसने 100 वर्ष के होने तक विश्वास किया था, और सारा 65 वर्ष की थी और 90 वर्ष की होने तक विश्वास करती रही, और वो लगभग एक मरे हुए के समान था। और परमेश्वर ने कहा, सो लोग इससे निश्चय ही नहीं चूकेंगे, उसे यहाँ पहाड़ी पर ले जाओ और उसे वहाँ ऊपर बलि करने के लिए चढ़ाओ। उसने दासों से कहा, तुम यहाँ खच्चड़ के साथ खड़े रहो और प्रतीक्षा करो, मैं और मेरा पुत्र वहाँ उस ओर जाकर और आराधना करेंगे और मैं और पुत्र लौट आएंगे। ओह, वो इसे किस तरह से करेगा? अब्राहम ने कहा, मैंने उसको मेरी मरी हुई अवस्था में से पाया है और मैं जानता हूँ कि वो जो उस एक को मुझे मेरी मरी हुई अवस्था में देता है, वो उसे मरे हुए में से जिलाने में सक्षम है, यदि मैं केवल उसके वचन को थामे रखता हूँ। थामे हूँ, मैं उसके वचन को थामे हुए हूँ, वो उसे मरे हुए में से जिलाने में सक्षम है। पूरी तरह से मसीह के बारे में बोलते हुए वहाँ है वो, और उस लहू की कोशिका के जरिए से पवित्र आत्मा आगे आता है जो स्वयं यीशु नामक शरीर में बंधा हुआ था। उस लहू ने विश्वास के द्वारा एक तरह से पवित्र किया, ताकि छुड़ाए हुए या परमेश्वर के चुने हुए को बुलाए, और जब तुमने उसे स्वीकार कर लिया और पवित्र आत्मा ने आप में से सारी दुष्टता तुच्छता को निकाल देता है, परमेश्वर स्वयं वो सीधे अंदर आता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। यहाँ पर वो बूढ़ा मालिक चिड़चिड़ाता है और ये दूसरा बूढ़ा फलाना और फलाना यहाँ पर ऐसा और ऐसा कर रहा है, और ये बूढ़ा व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहा है, इसके विरुद्ध बोलता है। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य ठीक इसके सामने खड़ा होगा। आमीन। और उन्होंने ध्यान दिया, वे अज्ञानी और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि वे यीशु के साथ थे। यही है जिसके लिए पवित्र आत्मा आता है। एक छोटा सा बूढ़ा मछुआरा अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं कर सकता, लेकिन वो वहाँ पर खड़ा रहा और कहा, हम किस पर विश्वास करें, मनुष्य पर या परमेश्वर पर? आमीन। आप इस बात को जान लें, हम अब भी यीशु के नाम में प्रचार करेंगे। ओह प्रभु, क्या ही हिम्मत है। वो जानता था उसके पास उस ओर एक घर है, ये सही बात है। वो यहाँ एक मुसाफिर और अजनबी था, वो आने वाले शहर के लिए देख रहा था। उस ढोंगी याजक का उसके लिए क्या मतलब था? वो स्वर्ग के परमेश्वर के प्रधानता के नीचे था, जिसने अपने पुत्र मसीह यीशु को जिलाया और उसे उस परमेश्वर की आत्मा से भर दिया जिसने आकाश और धरती को बनाया है। वहाँ आप हैं। वो उससे नहीं डरा था, नहीं श्रीमान। मृत्यु, क्योंकि जब उन्होंने उस छोटे से बूढ़े स्तिफनुस को वहाँ से लिया और कहा, इसे वापस लो, उसने कहा, तुम हटीले और हृदय और कान से खतना रहित लोगों, तुम हमेशा ही पवित्र आत्मा को रोकते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया वैसा ही तुम करते हो। उन्होंने कहा, हम तुम्हें मरते तक मारेंगे। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यदि तुम, हम तुझे दिखाएंगे कि हम ऐसा करेंगे या नहीं। और उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को लिया और उसके सर पर वार करने लगे। उसने ऊपर की ओर देखा और कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ, मैं सीढ़ी को नीचे आते हुए देखता हूँ, मैं यीशु को उसके वैभव के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ देखता हूँ। और बाइबल ने यह नहीं कहा कि वो मर गया, वो सो गया। ओह मेरे प्रभु, मैं बस एक दूत को नीचे आते हुए देख सकता हूँ, उसे उठाकर एक बच्चे की तरह हिलाता है, एक माँ की तरह, जब तक वो सो नहीं जाता। ओह मेरे प्रभु, निश्चय ही यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। इसी के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देने के लिए आता है। मेरे पास यहाँ कुछ और वचन है, बस एक मिनट। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देने के लिए आता है। मैं नहीं, आप इसे देख सकते हैं, मैं आज रात अब भी बहुत दूर हूँ। आपको सामर्थ्य देता है, प्रार्थना में सामर्थ्य। आप एक ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जिसने एक अच्छा जीवन जिया है, लेकिन वे हमेशा पराजित होते हैं। ओह मैं आपको बताता हूँ, अच्छा व्यक्ति, ओह निश्चय ही मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ भाई ब्रैनम, हमेशा हारा हुआ, उन्हें कभी किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। आप उस छोटी महिला को एक बार पवित्र आत्मा से भर दें, देखें कि क्या बात जगह लेती है। जब वो परमेश्वर के सामने जाती है तो वो पराजित नहीं होती है, वो विश्वास करते हुए हिम्मत के साथ परमेश्वर के सिंहासन की ओर आती है। उसके पास अधिकार है क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर की बेटी है। उस छोटे मनुष्य को ले, बहुत ही डरपोक, मालिक उसे हर जगह धिक्कारता है, कहता है अब यहाँ एक मिनट रुकना, कुछ तो बदल जाता है। देखो उसे पवित्र आत्मा मिलता है, यह आपको सामर्थ्य देता है, आपका जीवन सामर्थ्य से भरा होता है, यह आपके बोलने में सामर्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि ओह वे लोग जो डरते थे वहाँ बाहर खड़े हुए थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, लूका और बाकी के सारे, वे ऊपरी कोठी में पहुँच गए थे यह कहते हुए ओह हम अब और अधिक नहीं कह सकते। वे वहाँ देखो, वहाँ डॉक्टर फलाना और इत्यादि वहाँ पर हैं, वहाँ रब्बी फलाना और इत्यादि हैं। आप जानते हैं उसके पास कॉलेज की 4 डिग्रियाँ थी, हम भला कभी भी उसके विरोध में कैसे खड़े होंगे। पतरस ने कहा ओह मुझे याद है एक दिन वो मनुष्य मछली बेच रहा था, उसने बोला और मैं ये जानता भी नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा था, ओह मैं उसके विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन क्या हम क्या कर सकते हैं भाइयों, उसने कहा रुको, तो ठीक है हम यहाँ 4 दिन बिता चुके हैं, बस इंतजार करते रहो, कब तक, जब तक। अच्छा तो क्या उसने ये कहा कि ये 5वें दिन पर होगा, उसने कभी नहीं कहा कि कब तक, उसने कहा जब तक, तो ठीक है वे बस रुके रहे, कब तक, जब तक। 8 दिन बीत गए, जब तक। 9 दिन बीत गए, जब तक। और जब अतः पेंटिकॉस्ट का दिन पूरी तरह से आया था तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एक चित होकर, परमेश्वर उनके ऊपर रहा था, एक अग्नि से भरे बादल में परमेश्वर उनके साथ धरती पर चला था। अब कुछ और बात जगह लेने वाली थी, कुछ तो बात का होना तय है। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एक चित होकर, और एकाएक वहाँ आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे भर गया, जीभें फटती हुई ठहर ऊपर ठहर गई। फटती हुई क्या होता है, विभाजित हुआ, जैसे हकलाते हुए। क्या आपने कभी किसी को हकलाते सुना है, वे ऐसा करते हैं, ओह देखिए वे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, फटती हुई, विभाजित हुआ, एक फटे हुए खुर के जैसे, इसका मतलब कुछ ऐसा है, अलग अलग, विभाजित हुआ। वे बात नहीं कर रहे थे, वे बड़बड़ा नहीं रहे थे, वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन बस आवाजों को कर रहे थे। फटती हुई जीभें उन पर आ ठहरी मानो ये आग थी। ओह वे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद क्या हुआ, वे बाहर रास्तों पर निकल पड़े। वो रब्बी जॉन्स कहाँ पर है, वो व्यक्ति कहाँ पर है, और वो बौद्धिक दानव कहाँ पर है। परमेश्वर हमारे ऊपर था, मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में उसने हमें ऊंचे पर मन्ना खिलाया, वो हमारे साथ 3 वर्ष और 6 तक चला, 3 वर्ष और 6 महीने यहाँ धरती पर, लेकिन अब वो मुझ में है। ये मैं नहीं हूँ जो बोल रहा है, ये वही है, मैं जानता हूँ कि वो कौन है और मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अब नहीं रहा, ये वो है। उसे यहाँ ऊपर लाओ, हे इज़राइल के पुरुषों, और तुम यहूदिया के रहने वालों, तुम ये जान लो, तुम ये जान लो, और कान लगाकर मेरी सुनो, तुम सारे उपदेशकों और रबियों। ओह बोलने की सामर्थ, ओह ये मजीरा पिए हुए नहीं है, उस छोटे से अल्पसंख्यक लोगों को लेते हुए 120, 10,000 या उससे अधिक के विरुद्ध, जैसा तुम समझ रहे हो, ये मजीरा पिए हुए नहीं, लेकिन ये तो अभी दिन का तीसरा पहर ही चढ़ा है। मैं एक पूर्ण सुसमाचार प्रचारक हूँ, लेकिन ये वही है जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उढ़ेलूंगा। और तुम्हारे आपने मरियम को वहाँ आत्मा में नाचते देखा, अन्य जुबान में बोलते हुए और आगे बढ़ते हुए, सब मनुष्य पर और मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर अपने आत्मा में से उढ़ेलूंगा। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग के खम्बे और धुएं का बादल दिखाऊंगा। तब परमेश्वर अपने लोगों में था। आमीन। तो ठीक है, अब तुम्हें कौन सी डिग्री मिली है, कहाँ से, तुम किस स्कूल से आए हो, इससे ठीक अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, वो वचन को डालना आरंभ करता है। दाऊद ने उसे पहले से देखा, वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित हुआ क्योंकि और मेरी जीभ मग्न हुई। वो मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न वो उसके पवित्र भक्त को सड़ने देगा। मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। लेकिन एक नबी के द्वारा उसने एक के आगमन को पहले से देख लिया और ये तुम्हें ज्ञात हो जाए कि परमेश्वर ने इसी यीशु को बनाया जिसे तुमने क्रूस पर दुष्ट हाथों के द्वारा चढ़ाया, जो प्रभु और मसीह भी था। आमीन। हे मनुष्य और भाइयों, हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कहा पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर कभी अपने पास बुलाएगा। आमीन। जब तक परमेश्वर के पास लोग हैं, परमेश्वर के पास एक कलीसिया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो इसके साथ आगे बढ़ रहा है, इसी के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया। बुद्धिजीवी उठ खड़े होंगे हमेशा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास कहीं न कहीं अल्प संख्या में लोग हैं। परमेश्वर के पास एक छोटी सी कलीसिया है जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ सीधे आगे बढ़ती है, जो उजाले की घोषणा करती है, और वही वे एक होंगे जो अपनी गवाही के द्वारा संसार का न्याय करेंगे। क्या बाइबल नहीं कहता, यीशु ने कहा धन्य है मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और क्या ये ऐसा नहीं कहता है कि धर्मी संत धरती का न्याय करेंगे? निश्चय ही आज आपकी गवाही इस शहर के विरुद्ध न्याय को लाएगी। हमारी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की गवाही और परमेश्वर की सामर्थ एक पवित्र जीवन शहर के विरुद्ध न्याय को लाएगी। जब यह जो पहले हैं वे आखिरी होंगे, जो आखिरी हैं वे पहले होंगे। मैं सैनकी और मूडी के विषय में कुछ भी नहीं जानूंगा, उनके पुनरुत्थान में वे मेरे विषय में कुछ भी नहीं जानेंगे इस एक में, लेकिन मैं इस एक में खड़ा रहूंगा गवाही को देने के लिए, वैसे ही आप खड़े होंगे और उसमें से होते हुए अपने उजाले को बिखेरने के द्वारा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और उन जीवन के द्वारा जो आपने जिया और वे चीजें जो परमेश्वर कर चुका है, इसे साबित करने के लिए कि वो यहाँ पर चल फिर रहा है और अपने बुद्धि के साथ इससे दूर चले गए हैं, उनका संतों के द्वारा न्याय किया जाएगा। उनका पहले ही न्याय हो चुका है, वे इसमें से पहले से ही पार हो चुके हैं। ओह प्रभु, मैं प्रार्थना की सामर्थ, बोलने की सामर्थ, पवित्र जीवन की सामर्थ पर बात कर रहा था। आमीन। यही है जो पवित्र आत्मा को करना है। आप में से कुछ लोग साथ में चलते हैं, कहते हैं भाई मैं बस शराब पीना नहीं छोड़ सकता, मैं बस इसे नहीं छोड़ सकता। पवित्र आत्मा आता है ताकि आपके अंदर रहे, ताकि इन सारे नहीं कर सकता को आपसे दूर करने को लगाए। ये सही है। स्त्रियों को उनके बाल काटना बंद करने को लगाता है, उन्हें छोटे कपड़े और तंग पतलून पहनना छोड़ने को लगाता है, कोई बहाना नहीं, उन्हें बकवास बातें छोड़ने को लगाता है। ओह जी हाँ, यही है जिसके लिए वो है, आपका पवित्र जीवन बनाने के लिए। ये हर समय बाइबल के निर्देशों का पालन करेगा। एक स्त्री कहती है ये बहुत ही गर्मी है, मुझे बस इसे पहनना ही होगा, यदि मैं अपने बालों को बढ़ने देती हूँ तो मुझे सिर दर्द होता है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ कोई बहाना नहीं है, ये वैसा बनाने के लिए वहाँ पर है, यह बिल्कुल ठीक वचन का पालन करेगा। यही है जो पवित्र आत्मा को करना है। यह इसलिए है कि तुम पुरुषों को उन आधी नंगी स्त्रियों से अपना सिर फेरने को लगाए और उनकी अभिलाषा करने को छुड़वाए। और एक कलीसिया के सदस्य यही है जो इसे करना है। ये आपको धूम्रपान करना और शराब पीना छोड़ने को लगाता है और बनाना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाना चाहता है। ये आप में से इसे बाहर निकाल देगा। जब आप ऐसा करेंगे तो यह आपको नम्र करेगा। यही है जिसके लिए पवित्र आत्मा है। ये एक पवित्र जीवन के लिए है। ये सही है। आपको व्यर्थ बातचीत छुड़ाने को लगाता है, आपको ताश खेलना, पासे फेंक कर जुआ खेलना और ये सारी अन्य चीजों को छुड़ाने को लगाता है जो आप पीछे कोने में करते हैं। ये आपको छोड़ने को लगाएगा जिस तरह से आप करते जा रहे हैं, अपने पत्नी के प्रति असत्य रहते हैं। यही है जो ये करेगा। ये सही है। आप किसी और की पत्नी से विवाह करना चाहते हैं, ये इस बात से छुड़ाएगा। यह बिल्कुल सही है। यही है जो ये है। यह आपको एक पवित्र जीवन जीने को लगाता है। यही है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि आपका ध्यान ऊपर की वस्तु पे लगा हो, जहाँ पर परमेश्वर खड़ा, परमेश्वर का मन आप में है। आप उन चीजों को देखने से सहायता नहीं कर सकते हैं। जब आप उनकी ओर देखें तो आप अपने सिर को घुमा लें। ये सही है। ये आपको करने को लगाता है। आप कहते हैं मैं इसे नहीं कर सकता, ओह मैं बस ऐसा नहीं कर सकता। निश्चय ही आप नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा इसी उद्देश्य के लिए आता है। यही है जो उसने किया। यह उन सारी पुरानी आदतों और चीजों को आप में से बाहर निकालने के लिए आता है जो आप कर रहे होते हैं। वो पहले की तरह पीठ पीछे बातें करना, खुद को अलग करना, कहना परमेश्वर धन्य है मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मुझे उन पुराने पवित्र शोर मचाने वालों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पवित्र आत्मा इसे आप में से बाहर निकालने के लिए आता है। मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं उस छोटे पुराने पवित्र शोर मचाने वाले झुंड में नहीं जाऊंगा। पवित्र आत्मा उस सारे हट को आप में से निकालने के लिए आता है। यही है जो उसने किया। यह आपको लहू में धोता है, आपको दृढ़ करता है। यही है जो ये करने आया है। यह आपको सीधा करने के लिए आता है। उसने कहा टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा करने। यही है जो ये करने के लिए आया है, इसे सीधा करने। ऊंचे स्थानों को नीचा करता है, सारे पहाड़ों को ऐसा दिखाने को लगाता है जैसे वे सभी छोटे मेढों की तरह नाच रहे हों और सारी पत्तियां आपके लिए उनके हाथों से ताली बजा रही हों। पक्षी अलग ही गाने लगते हैं, आनंद की घंटियां बजने लगती हैं, वहां कोई बहाना नहीं है। यही है जो ये करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा को भेजने के लिए परमेश्वर का यही उद्देश्य है। सो आप इन चीजों को करेंगे, जो आप करेंगे उसके पीछे चलेंगे। अब मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर सच्चाई की अधिक गंभीरता के साथ हूँ कि आपको चिमटी लेने से रोकता हूँ। मैं कभी तो एक बार कहीं और दिशा पर चला जाता हूँ और सत्य के साथ बना रहता हूँ, लेकिन वहीं बने रहकर और इसे इस तरह से बनाता हूँ ये आपको अत्यधिक चिमटी न दे। लेकिन मैं आपको कुछ तो बताना चाहता हूँ। यदि बाइबल कहता है कि स्त्री को उसके बाल कटवाना गलत है, तो आप कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है और फिर आप अपने बाल को कटवाती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्या आपके पास है? पागल मत बनो। यदि ये ऐसा करते हैं तो यह अब भी दिखाता है कि वहाँ आपके विरुद्ध एक दूसरी ही छाप है। यदि बाइबल कहता है कि स्त्री के लिए गलत है कि ऐसे वस्त्र को पहने जो एक पुरुष से संबंध रखते हैं, और तुम इन छोटी सी पुरानी पोशाक और चुस्त पतलून को यहाँ सड़क पर पहनती हो, तुम जो वयस्क स्त्रियाँ हो, सोचो एक छोटी बच्ची सब कुछ पहनती होगी कि वे छोटे लड़कों और इत्यादि के साथ खेलती हैं। लेकिन देखो जब तुम वयस्क स्त्रियाँ 15, 16, 18 वर्ष की दादी होने तक यहाँ सड़क पर पहनती हो, और बाइबल ने कहा यह परमेश्वर की दृष्टि में एक घृणित है एक महिला के लिए उन चीजों को पहनना, और आप कुछ भी हो उन्हें पहनती हैं और कहती हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ पवित्र आत्मा अक्षर दर अक्षर परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, और पुलपिट के पीछे एक प्रचारक जिसके पास इसे प्रचार करने के लिए इतना भी अनुग्रह नहीं है, मुझे संदेह है कि इसे मिला है। यह बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, यही है जिसके लिए पवित्र आत्मा है। यह प्रचारक को जोश देने के लिए है, यह झुंड को पवित्रता देने के लिए है, यह कलीसिया को व्यवस्था में रखने के लिए है, यह आत्मा की एकता को लाने के लिए है, यह हमें सामर्थ्य के साथ एकजुट करने के लिए है, यह हमें प्रेम भाईचारे के प्रेम में एक साथ जोड़ने के लिए है। मैं परवाह नहीं करता कि आप मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन, लूथरन हैं, चाहे आप जो कुछ भी हो, यदि हम सब ने एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है और यीशु मसीह के देह के सदस्य बन गए हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई भी वर्तमान नहीं है, कोई भी भविष्य, भूख, भुखमरी, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम, मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम जो मसीह में है, क्योंकि हम उसकी आत्मा से जन्मे हैं, उसके लहू में धोए गए हैं, हम एक नई सृष्टि हैं, यही है जिसे करने के लिए परमेश्वर आया, यही है जिसके लिए पवित्र आत्मा है। जी हाँ श्रीमान, यही तो है। अब लोग मेरे चेहरे की ओर देखें, बहुत से हाथ ऊपर उठे, आप जिनके पास पवित्र आत्मा था, देखो नीचे ही वहाँ था। ओह, अब मैं यहाँ बस कुछ बात को डालने जा रहा हूँ, ये टेप हुआ है, लेकिन हम कल रात इस पर और अधिक लेने जा रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि आपको यह मिल गया है और इसके लिए आप दोषी होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको कौन अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर आपको कभी भी वचन से बाहर अगुवाई नहीं करेगा, वह आपको वचन के साथ रखेगा, क्योंकि यही परमेश्वर के अपने नियम है उसकी कलीसिया के, उसके लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए। अच्छा, कहते हैं यह ऐसा या वैसा करने से मुझे हानि नहीं पहुंचाता है, ये नहीं पहुंचाता है, वचन कहता है कि यह पहुंचाता है। और यदि पवित्र आत्मा आप में है, तो ये आपको सीधे वचन की ओर अगुवाई करेगा, वहाँ कोई बहाना नहीं होगा। परमेश्वर फेर बदल या बहाने नहीं करता है, वो निशान को बनाता है और आप इस पर कदमों को रखते हैं। बस ऐसा ही है, यही है जो सबके साथ होता है, आप उसी तरह से आते हैं। पतरस ने कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करो, तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखा, ऐसा ही है, हमें उस रेखा तक पहुंचना होगा। अब मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं साथ ही कि मैं जानता हूं कि मुझे अंत के दिनों में उस पुनरुत्थान के समय पर खड़ा रहना होगा, लोगों की इस पीढ़ी के साथ और इस वचन के लिए लेखा जोखा देना होगा, और पवित्र आत्मा इसे दिखा रहा है और मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, तो वहाँ उस ओर आप कहाँ पर खड़े रहोगे? आप इससे किस तरह से बच निकलोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते मित्र, नहीं करें, अब इसे रोक दें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, इसे रोक दें। आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तब आप में अब तक कपटीपन नहीं है। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आपको संसार के ऊपर सामर्थ को देता है, और यदि आप सुनना उसने क्या कहा, यदि आप संसार से या संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, तो ये इसलिए है कि परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। अब वहाँ कोई बहाना नहीं है, तो इसे स्पष्ट करता है और हमें उस लक्ष्य तक पहुँचना है। मैं जानता हूँ कि आप सोचते होंगे कि मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं बस ठीक अभी पूरा गंभीर हूँ, समझे? सुनना, ये सच है। अब इस पर जाएं भाइयों बहनों, अपने आसपास के किसी इन बौद्धिक कॉलेजों में से आपको इसे न कहने दें, ओह ये तो पुरानी रूढ़िवादी या दकियानुसी बातें हैं। यदि ये पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं, तो फिर परमेश्वर पुराना रूढ़िवादी है, और यदि परमेश्वर पुराना रूढ़िवादी है, तो मैं भी हूँ। आमीन। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, क्यों? उसका आत्मा मुझ में है, वो भूख और प्यास, हर एक चीज जो वचन के विपरीत कहलाती है। यदि लोग कहते हैं ये ठीक है, ओह यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए जरा सा ताश खेलता है और बस एक या दो सिक्कों की जुआ खेलता है, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है। ओ यदि आप बस एक अच्छा प्रेम से मिलने जुलने के लिए पी लेते हैं और कभी तो बस जरा सा मदिरा ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा हाय उस पर। ओह आप कहते हैं इसमें कोई बात नहीं भाई ब्रैनम, मैं एक वास्तविक बात की वजह से अपने बाल काटती हूँ। एक महिला, आप जानते हैं बाकी महिलाएं इसे काट रही हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि बाकी महिलाएं क्या कर रही हैं, वे आपके लिए उदाहरण नहीं हैं या वे आपकी मालिक नहीं हैं। यदि आप में आपने पवित्र आत्मा को पाया है, तो आप उसके निर्देशों का पालन करेंगे, इसको ध्यान दिए बिना कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। तो ठीक है भाई ब्रैनम, ये बस बहुत ही गर्मी है और मुझे बस ये छोटे से ऐसे और वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। नरक उससे भी ज्यादा गर्म है प्रिय बहन, मैं आपको ये बता दूं, और ना करें आप ये याद रखना। और पवित्र आत्मा हमेशा ही आपको सत्य की ओर अगुवाई करेगा, और उसका सत्य वो वचन है। मेरा वचन सत्य है, हर एक मनुष्य का शब्द झूठा ठहरे, लेकिन मेरा सच्चा। और जरा सोचो एक घृणित बात, क्या आप सोच सकते हैं? यह एक सेवक के कहने के लिए एक भद्दे शब्द होंगे, लेकिन मैं उन जगहों के शौचालयों में गया हूँ जहाँ ये बस आप लगभग वापस बाहर निकलकर आ जाएंगे, ये बस उतना, और दीवारों पर गंदी चीजें होती हैं। मैंने सोचा संसार में लोग भला इतने नीचे स्तर के कैसे हो सकते हैं और बदबूदार। और जब मैं उन जगहों पर जाता हूं, तो मैं अक्सर सोचता हूं क्या ही बदबू है। मैं वहां पर मैं अपने हाथों को धोने के लिए अपनी नाक इस तरह से पकड़ता हूं। मुझे डर लगता है कि जब मैं फिर से दरवाजे की कुंडी को पकड़ लिया तो उसमें यौन संबंध और चीजों के रोगाणु होंगे। और मैंने सोचा ओह, एक दिन एक हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ था, उनमें से एक स्थान जहां पर मैं गया, मेरा मतलब एक रेल मार्ग के स्थान पर, मैं उसमें चलकर गया और मैंने सोचा ओह दया। और किसी ने तो मुझसे कहा इसी प्रकार से संसार के प्रति परमेश्वर को दुर्गंध आती है, यह एक घृणित बात है। मैंने सोचा जब मैं एक स्त्री को सड़क पर टहलते हुए देखता हूँ और अपने आप को सब उसी तरह से अंजाम देती हैं और पुरुष के वस्त्र पहने हुए होती हैं, यह वही है जो परमेश्वर को उसी तरह से दिखाई देता है। यह एक घृणित बात है, कुछ तो ऐसा जो परमेश्वर के सामने गंदा और बदबूदार है, फिर भी वो रविवार को कलीसिया जाती है और सजती है। वहाँ कलीसिया में एक मनुष्य जाएगा और फिर शराब पीता है और छल करता है और पैसों से प्रेम रखेगा और अपने पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करता है और बाकी हर एक चीज करता है थोड़ा ज्यादा पैसा पाने के लिए, और इन कामों को करता है और जुआ खेलता है और धूम्रपान करता है और शराब पीता और झूठ बोलता है और फिर कलीसिया जाकर और गवाही देता है। घृणित बात है, गंदगी है, यही बौद्धिक कलीसिया है। कहते हैं भाई मैं कलीसिया से संबंधित हूँ, हाँ, और कलीसिया को 15 मिनट के लिए बाहर जाने देते हैं जिससे कि सारे डीकन और वे सारे धूम्रपान कर सकें और पास्टर भी, इससे पहले कि आप कलीसिया में वापस जा सकें। मुझे बताओ, हर एक अशुद्ध चीज से अपने आप को अलग करें, शरीर को अशुद्ध करते हो, मैं इसे नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा कि वो ऐसा करेगा। और आज कैंसर से जो 90 से ज्यादा प्रतिशत मृत्यु का कारण बन रहा है, गले और फेफड़ों के कैंसर का जो सिगरेट पीने की वजह से होता है, शरीर को अशुद्ध करते हो मैं इसे नष्ट कर दूंगा, लेकिन वे इतने नरक से बंधे हुए हैं, इस तरह करते ही जाते हैं, वे नहीं जानते। और कुछ प्रचारक पुलपिट में खड़े होते हैं 4 डिग्रियों के साथ कॉलेज से बाहर धूम्रपान करते हुए स्वयं। मुझे आपको कुछ बताने दो भाई, उस बात में से पुरुषों और महिलाओं को बाहर बुलाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया था। अपने आप को अलग करें, कलीसिया शब्द का अर्थ होता है अलग किया हुआ होना, उनके बीच में से बाहर निकलो। बाइबल ने कहा उनकी अशुद्धता को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे लिए पुत्र और कन्या ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ओ प्रभु, मेरा अर्थ बुरा होना नहीं है, लेकिन मेरा अर्थ ईमानदार और सच्चा होना है। जी हाँ श्रीमान, ओह क्या ही भयानक बात है। पुरुष और स्त्री, आज हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर हैं? आइए रोक दें। एक रात उस और कमरे में एक छोटी सी पुरानी जगह थी और मुझे बंद करना होगा, एक छोटी सी पुरानी दोहरी जगह। 3-4 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया, यहाँ से वहाँ घूम रहा था और सोच रहा था हे परमेश्वर, और मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया, इतना तक मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा परमेश्वर हम मार्ग के अंत में हैं, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अनदेखा किया है, मुझे जाने के लिए बुलावे आए थे और मैं थक गया हूँ और इसे नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा कि तब मैं मेरे प्रभु को अंधेरे में होते हुए लड़खड़ाते हुए देख सकता हूँ, जब वो बहुत थक गया था कि वो एक कदम के बाद दूसरा कदम मुश्किल से उठा सकता था, लेकिन वो भी नहीं, नैन की महिला के लिए रुक गया, उसके बाद उस लड़के के लिए जो वहाँ पर मरा हुआ लाया गया, इतना तक कि वो वहाँ पर जाकर और अर्थी को छू सका और जो थोड़ी सी शक्ति उसमें थी उसे उपयोग करता है ताकि उस लड़के को जिलाए। अच्छा, मैं कैसे थक गया, मेरे साथ क्या मामला है प्रभु, यहाँ मुझे लगता है तो ठीक है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर मूसा था, वही परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मूसा वहाँ उस ओर खड़ा था, 120 वर्ष की उम्र का। वहाँ कालेब था जो 90 वर्ष का, हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था और कहा यहोशू ने इस तलवार को 40 वर्ष पूर्व मेरे हाथ में रखा था, तब वो 80 का था, कहा मैं आज भी लगभग वैसा ही पुरुष हूँ जैसे मैं तब था, आमीन। मैंने कहा परमेश्वर मुझ पर दया करें। मैंने कहा तो ठीक है, यहाँ देखो मैं हमेशा ही, और मैंने अपनी पत्नी को वहाँ पीछे हाथ से पकड़ा, इस बाइबल को और उसकी छोटी बाइबल को तिरछा रखा और मैंने कहा प्रिय मैं बहुत नकारात्मक रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे भीतर मुझे दोषी ठहराता है। मैं वहाँ उस ओर की उन गिलहरियों के बारे में सोचता हूँ, मैं वहाँ पीछे हैटी राइट और छोटे लड़कों के बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने जो किया है यह दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर था जो सृष्टि कर सकता है। हालेलुया, मैंने सोचा उसने मुझे ये बताया है वर्षों पहले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कोई भी मनुष्य तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन के सारे दिनों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस परखने के हाथों से यह आएगा इतना तक तुम हृदय के रहस्य को जानोगे, इसके बाद यह ऊंचाई और ऊंचाई में बढ़ता जाएगा। उसके बाद के वर्ष संसार भर में सही प्रमाणित हुआ, यहाँ पर यह आता है, यह दूसरी महान सेवकाई जो इससे बहुत आगे है। मैंने कहा प्रिय मैं तुम्हारे हाथ को थाम लेता हूँ, परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे फिर कभी नकारात्मक न होने देना, मुझे यहाँ इस बेदारी की ओर आगे बढ़ने देना कि ऐसा प्रचार करूँ जो इससे पहले इस तरह से कभी नहीं किया हो, मुझे यहाँ पर जाने दो कि पहले अपने आप को पवित्र करूँ और लोगों के लिए मार्ग को तैयार करूँ, कि मेरे अपने पाप मेरा अपना अनदेखा करना लहू के नीचे हो, मेरी अपनी गलतियाँ लहू के नीचे हो, जिससे कि मैं बाहर चलकर जा सकूँ और कहूँ मेरे पीछे हो लो लोगों ये सही है। मैं एक व्यक्ति को यह कहते हुए देखने से घृणा करता हूँ, तुम जाकर इसे करो, मैं किसी को तो देखना पसंद करता हूँ जो इसे करने के लिए मार्ग में अगुवाई करे। जी हाँ श्रीमान, यहाँ कुछ समय पहले हमारे यहाँ शहर में आग लग गई थी, पफाऊ तेल की कंपनी में आग लग गई थी, उनके पास वहाँ नीचे जेफरसन विले अग्निशामक की शाखा थी, और मेरा एक दोस्त भला मनुष्य कभी भी ऐसी बड़ी आग में काम करने का आदी नहीं था, वो वहाँ पर चलते हुए कह रहा था थोड़ा पानी यहाँ पर छिड़को लड़कों, थोड़ा पानी यहाँ पर छिड़को, यहाँ पर छोटे क्लार्क्स विले पर गाड़ी आती है, डिंग 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 दौड़ते हुए वहाँ आती है, और उसने कहा अग्निशामक के प्रधान ने छलांग लगाकर कहा थोड़ा पानी यहाँ पर नीचे छिड़को, इस खिड़की को यहाँ धक्का लगाओ, वहाँ थोड़ा पानी छिड़को, लेकिन नदी के उस पार से लुइस विले से प्रशिक्षित अग्निशामक कर्मी आते हैं, वो बड़ा लंगर और सीढ़ी को नहीं रोका जब तक कि प्रधान सीढ़ी के अंत पर नहीं होता था, जब सीढ़ी ऊपर जाने लगी तो वो सीढ़ी के सबसे ऊपर था, तो वहाँ पर पहुँचने से पहले उसने अपनी कुल्हाड़ी को फेंक कर और खिड़की को जोर से प्रहार करके बाहर किया, कहा लड़को आगे बढ़ो, बस इतना ही, कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई। ना ही यहाँ पर थोड़ा पानी छिड़को, वहाँ थोड़ा पानी छिड़को, इस बात को ध्यान में रखें, इनमें से कुछ बौद्धिक प्रचारकों साथ साथ चलो, आइए चलें, मैं जानता हूँ ये सच्चाई है, मैंने चखा और देखा है, महिमा हो, पवित्र आत्मा सही है, परमेश्वर भला है, यहाँ कोशिश मत करो, वहाँ कोशिश मत करो, आइए उसके अंदर चलते हैं, वो यहाँ पर है, वो आपके लिए है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को अपनी कलीसिया को दिया है, ना ही इसे यहाँ छिड़के और वहाँ छिड़के, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ो, आमीन। आप यहाँ तक उनमें से होकर अब और देख भी नहीं सकते हैं, आमीन, हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इसी बात से तो भरा हुआ है, तब मैं बंद करने जा रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद करना पड़े, आप किसी से तो भरे हुए हैं, आप बिना किसी से भरे हुए वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, आप में एक जीवन है, वो जीवन आपको संचालित करता है और वो जीवन एक आत्मा के द्वारा संचालित होता है। अब आप हो सकता है संसार से भरे हुए हो, संसार से या संसार की चीजों से प्रेम करते हो, परमेश्वर आप पर दया करे, हो सकता है कि आप किसी कलीसिया के मत सिद्धांतों से भरे हो, कुछ छोटी छोटी प्रार्थनाएं जो आप कहते हैं, आप सोचते हैं कि इससे किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं या अपने ऊपर किसी प्रकार के चिन्ह को बनाएं, परमेश्वर आप पर दया करे, और हो सकता है धर्म से भरे हुए हों, और यह भी बदतर है, ये सही बात है, ये सही बात है, बाइबल ने कहा अंत के दिनों में वे बहुत ही धार्मिक होंगे, भक्ति का भेष धरते हैं, भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसों से परे रहना, यदि आप धर्म से भरे हुए हैं आप अभागे हैं, केवल धर्म बस इतना ही, यदि आप मत सिद्धांत से भरे हुए हैं तो आप नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, यदि आप संसार से भरे हुए हैं तो आप अंधे हैं, और तब फिर से आप हो सकता है पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप हैं, और यदि आप नहीं हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरे भर जाएंगे। और यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आपको क्या मिला है? आपको सामर्थ मिली है, आपको प्रेम मिला है, आपको शांति मिली है। मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, संसार की नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। आपको शांति मिली है, आपको मोहर किया गया है, आपके पास एक चिन्ह है। आमीन। आपको विश्राम मिला है, आपको अवर्णनीय आनंद मिला है और महिमा से भरा हुआ आप लंगर डाले हुए हैं। ओ प्रभु, यही जो आप हैं, पवित्र आत्मा के साथ आपके पास। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। अंतिम दिन में सामान्य पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हो। आने वाले संसार में हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, और जिसने उसे महिमा और वैभव के साथ आते देखा, और समुन्दर उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे देगा, जो उसमें सोए हुए दुष्रणीय शरीर हैं, उसमें सोते हैं। आप उसमें कैसे आते हैं? एक आत्मा के द्वारा। हम सभी एक शरीर में बपतिस्मा लेते हैं। उनके दूषित शरीर जो उसमें सोते हैं बदल जाएंगे, और उसकी अपनी महिमामय देह के समान बन जाएंगे, जिससे वो सारी चीजों को अपने आप में अधीन करने में सक्षम है। मैंने स्वर्ग से एक आवाज को सुना। योना ने कहा, मुझसे कहा, लिख, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। आप उसके अंदर कैसे जाएंगे? एक आत्मा के द्वारा हम शरीर में बपतिस्मा लेते हैं, जो अब से लेकर प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे उनके परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यही है जिसके लिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। ओ धन्य आश्वासन, यीशु मेरा है, मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है, पिता उसमें और वो पिता में, और पिता मुझ में और मैं उसमें। यीशु मेरा है। ओ दैविक महिमा का क्या ही पूर्वानुभव है। मैं उद्धार का वारिस हूँ, परमेश्वर का खरीदा हुआ, उसकी आत्मा से जन्मा, जब उसके लहू से धोया गया। आमीन। मैं इसका लेन देन नहीं करूँगा। ओ प्रभु, सारे माणिक और हीरे और चांदी और सोना उसके खजाने भरे हुए हैं, उसके पास बेशुमार दौलत है। क्योंकि मैं एक राजा की संतान हूँ, मेरे उद्धारकर्ता यीशु के साथ मुझे राजा की एक संतान बनाता है। आमीन और आमीन। मैं इसे अदल बदल नहीं करूँगा, मेरे पास दो या तीन और, फिर यहाँ एक और वचन है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो यही चीजें आपके पास होती है। उसके बाद आप संसार के लिए क्या होते हैं? एक भिन्न स्वभाव के। मैं जानता हूँ कि देर हो चुकी है, लेकिन इसके लिए कभी देर नहीं हुई है। एक अजनबी। ओह, हम परदेसी हैं और हम यहाँ पर अजनबी हैं। हम आने वाले एक नगर के लिए देख रहे हैं। रक्षा नौका जल्द ही आ रही है, उसके रत्नों को घर इकट्ठा करने के लिए। मैं उस ओर ओहियो नदी पर पानी के छप छप की आवाज को सुन सकता हूँ। जब मैं लगभग 22 वर्ष का एक छोटा सा लड़का प्रचारक था, इसे वहाँ गा रहा था, और मैंने सुना, मैंने मेरे ऊपर देखा और एक आवाज को सुना, कहा, ऊपर की ओर देखो। यहाँ वो बड़ा उजियाला उस ओर मंडरा रहा था, ऊपर से बढ़ते हुए नीचे मेरे ऊपर आ रहा था, और कहा, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मसीह के प्रथम आगमन के पूर्व सूचना के लिए भेजा गया था, तुम्हारे पास एक संदेश होगा जो मसीह के दूसरे आगमन की पूर्व सूचना को देगा। ओह, मैं भला इस पर कैसे विश्वास कर सकता था? लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही घटित हुआ, और आज रात बेदारी की आग संसार भर में और संसार में हर कहीं जल रही है। परमेश्वर की महान छुड़ाई हुई कलीसिया ने स्वयं को उस स्थान से ऊंचा उठाया है, और चंगाई के बड़े अभियान किए हैं, और चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य किए हैं जो आने वाले को प्रकट करते हैं। आप एक अलग स्वभाव के हैं, और आप एक अजनबी हैं। आप अजीब सी चीजों को करते हैं जो आप हमेशा करते थे, उससे अलग आप पहले की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। लोग पवित्र आत्मा, जब वो आप पर आता है और आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, आप संसार की चीजों को अनदेखा करते हो। आप उन चीजों को अनदेखा करते हो जो आपको परेशान करती हैं। आप इसे अनदेखा करते हैं। तब आप एक विचित्र कार्य करने वाली सृष्टि बन जाते हो उनके लिए, भद्दा सा बदक का बच्चा, वो छोटा उकाब जो मुर्गी के घोंसले के नीचे अंडे से बाहर आया, जिसे मैंने प्रचार किया था। और जब उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, आप उनके लिए एक अजीब सी दिखने वाली सृष्टि हैं, लेकिन ओह प्रभु राजा के राजमार्ग पर चल रहे हैं, आमीन। ओह ये एक स्वर के लिए राजमार्ग है और मैं राजा के राजमार्ग पर चल रहा हूँ। कहते हैं उस पवित्र शोर मचाने वाले की ओर देखो, वो बद्दा बदक का बच्चा, यही वो शोर मचाने वाला प्रचारक है। एक प्रसिद्ध मेथोडिस्ट प्रचारक ने आज लुइसविले में एक व्यक्ति से कहा, मैं भाई बिल्ली की सराहना करना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी गर्दन को अटकाना होगा। आपको मेरे लिए अपनी गर्दन को अटकाने की आवश्यकता नहीं है, उसने मेरे लिए अपने जीवन को अटकाया है, आमीन। केवल राजा के राजमार्ग पर चलते रहें, बस इतना ही। ओह प्रभु, उसकी आत्मा से भरा हुआ, उसकी आत्मा से जन्मा, उसके लहू में धोया गया, हालेलुया, आनंदित। और फिर एक और बात, क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अब भी एक मनुष्य ही हैं, लेकिन आपसे ऐसा कौन करने को लगाता है? ये इसलिए है कि आप आए हैं, आपकी आत्मा ऊपर से आई है, ये आप में परमेश्वर है। जब मैं वहाँ रोम गया तो मैंने ध्यान दिया कि वे हर एक जन में रोमी आत्मा थी। जब मैं ग्रीस गया तो उन सभी में एक ग्रीस की आत्मा थी। मैं इंग्लैंड गया था, उन सभी में एक अंग्रेजी आत्मा थी। जब आप स्थानों पर जाते हैं तो आप पाएंगे, तब आप अमेरिकी आत्मा को पाते हैं, यह भयानक बात है। जब मैं रोम के सैन एंजेलो के कब्रों के तहखानों में गया तो उन्होंने वहाँ ऊपर एक तख्ते को लिखकर लगाया हुआ था, कृपा अमेरिकी महिलाएं मरे हुओं का सम्मान करने के लिए कपड़े पहने, अमेरिकी आत्मा। उन्हें हवाई जहाज से उतरते देखें और वे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए होती हैं और हर एक जन उन्हें देखने जाते हैं, और यहाँ पर कुमारी अमेरिका आती है, यही अमेरिकी आत्मा है। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, पहने हुए कपड़ों से, लड़कों के उसके पीछे एक छोटे पुराने से बाल कतरे हुए कुत्ते को खींचते हुए, यह सही है। ओह हाँ, वो अमेरिकी है, कुमारी अमेरिका वहाँ चलती है, आप समझ रहे होंगे, इस तरह से अकड़ते हुए, क्यों? उसके पास अमेरिकी आत्मा होती है। लेकिन यीशु ने कहा, उसने उस दिन की गवाही दी और कहा, तुम यहाँ नीचे इस धरती से हो, मैं वहाँ ऊपर से हूँ। और यदि आपके अंदर मसीह की आत्मा है तो आप ऊपर से हैं, तो आप यहाँ पर एक अजनबी होते हैं, लेकिन आपके पास उस स्थान का स्वभाव होता है जहाँ से आप हैं। यही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रोमी यहाँ पर आता है, वो उसके सिर को खरोचने लगता है, और यहाँ एक जर्मन आता है, अमेरिकी वहाँ जाता है, क्यों? आपके पास उन देशों की आत्माएं हैं जहाँ से आप आए हैं। यही है जो हमें संसार से इतना अधिक अलग बनाता है। आप ऊपर से हैं, आप जन्मे हैं, आप दूसरे राज्य के नागरिक हैं। आप इसे विश्वास करते हैं? यही है जो पवित्र आत्मा है, जो आपको परमेश्वर के राज्य का एक नागरिक बनाता है। फिर यदि आप परमेश्वर के राज्य के एक नागरिक हैं, तो यह आपको किस तरह के कार्य करने को लगाता है, जैसे परमेश्वर अपने राज्य में करता है। अब परमेश्वर अपने राज्य में क्या करता है? ये पवित्रता है, धार्मिकता है, विचार की पवित्रता है, मन की पवित्रता है, सामर्थ और प्रेम, खोए हुए के पीछे जाना, बीमारों को चंगा करना, अद्भुत कार्यों को करना, महान कार्य को करना। तब आप संसार को पागल दिखाई पड़ते हैं और वे कहते हैं, उन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, देखा? लेकिन आप लोग उस राज्य के नागरिक हैं। एक और वचन है, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, यूहन्ना 12:24, मैं इसका आपको जल्दी से हवाला देता हूँ। यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता, ये आगे एक और जीवन को नहीं ला सकता है। अब देखिए, अब एक समापन टिप्पणी, और तब याद रखें, यह बिल्कुल ही अब आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है और निश्चयात्मक और अनिवार्य है कि आप पवित्र आत्मा को अभी प्राप्त करें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो आप पुनरुत्थान में नहीं आ सकते। अब ध्यान दें, परमेश्वर अपनी व्यवस्था को नहीं तोड़ सकता, हम ये जानते हैं, वो अपनी व्यवस्था का पालन करता है। अब एक गेहूं का दाना या मकई का दाना हम लेंगे, जैसे यीशु ने वहां कहा, अवश्य ही एक मकई। बाइबल में मैं इसे आज ही पढ़ रहा था, सन या किसी प्रकार के बीज के संदर्भ में कहता है, लेकिन गेहूं, जौ, मक्का या कोई भी, ये एक दाना है। लेकिन जब गेहूं का एक दाना जमीन में गिरता है, अब वहां हम सभी ने यहां देखा है, जानते हैं ऐसा होता है, एक गेहूं का दाना या एक मकई का दाना जितना हो सके उतना सही दिख सकता है, और आप इसे जमीन में डाल दें, और यदि ये इसमें चिर स्थायी जीवन होता है, ये आज नीचे जाएगा, खुद को एक डंठल में फिर से उत्पन्न करेगा, और वापस नीचे जाता है, और फिर से ऊपर आता है, और वापस नीचे जाता है। यह चिर स्थायी जीवन है। यदि उस मकई में जीवन का जीवाणु नहीं है, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह कभी भी ऊपर नहीं आएगा। यह जमीन के अंदर जाएगा और सड़ जाएगा, और बस इतना ही है। इसका एक भाग सामग्री को उपजाऊ करने के लिए और भूमि में चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक ये फिर से जीता है, यह कभी नहीं जिएगा जब तक इसमें चिरस्थायी जीवन न हो। यह तो हर कोई जानता है, आप बस नहीं कर सकते। वहाँ दो मनुष्य हो सकते हैं, उनमें से एक बिल्कुल वैसे ही, दोनों बिल्कुल एक जैसे। उनमें से एक अच्छा मनुष्य हो सकता है, वह अच्छे काम कर सकता है, वह इत्यादि बातों को कर सकता है, लेकिन जब तक इस मनुष्य में अनंत जीवन ना हो, वो पुनरुत्थान में कभी ऊपर नहीं आएगा। वो इसे नहीं कर सकता। वहाँ ऊपर आने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे ऊपर लाने के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई जीवन नहीं है। तो आप देखो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, जब तक कि मनुष्य नया जन्म नहीं लेता, वो इस राज्य में किसी रीति से वापस नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। जब तक ये गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मरता नहीं है, वो अपने बारे में बोल रहा था, लेकिन उसके पास चिरस्थायी जीवन नहीं था, उसके पास अनंत जीवन था, और वो जीवन जो उसने आपको दिया है, जिससे कि आपके पास भी उसी प्रकार का जीवन हो सके। अब यदि आपको केवल मनुष्य का जीवन मिला है, तो आपके यहाँ वहाँ घूमने फिरने और अभिलाषा करने के लिए पर्याप्त है। वो जो सुख विलास में जीती है, वो जीवित रहते हुए भी मरी है, आप ऊपर नहीं आ सकते। आप स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की हो सकती हैं, आप अपने समाज के ताश के खेल में सबसे लोकप्रिय लड़की हो सकती हैं, आप देश की सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली महिला हो सकती हैं, आप सबसे सुंदर हो सकती हैं, आप शारीरिक रचना में सबसे अच्छी हो सकती हैं, आप अपने पति के लिए एक आदर्श हो सकती हैं, आप हो सकता है ये सभी चीजें हों, ये अच्छी बात है। लेकिन बहन, जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है, जो कि अनंत जीवन है, इस मार्ग के अंत में तो आप समाप्त हो जाते हैं। और मैं परवाह नहीं करता कि आप कैसे दिखते हैं, या ये चीजें किस तरह से हैं, या आप कितने लोकप्रिय नहीं हैं, या लोकप्रिय हैं, कितने सुंदर हैं, या कितने बदसूरत। यदि आपको अनंत जीवन मिला है, तो आप हमेशा और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। जब चांद और तारे चले गए और पृथ्वी अपने आप पहाड़ों और रेगिस्तान में रो पड़ी, और हर एक चीज है ये अब और नहीं रहती है, और ये संसार शराब पिए हुए की तरह जो डगमगाते हुए रात को घर आता है, और तारे चमकने से मना कर देते हैं, और आकाश से गिरने लगते हैं, और चंद्रमा लहू में बदल जाता है, और वो सूर्य शर्मा जाता है और अपना मुंह छिपा लेता है, जब ये मनुष्य के पुत्र को आते हुए देखते हैं। आप यीशु मसीह की धार्मिकता में चमक उठेंगे, कब्र से एक युवा सुंदर स्त्री की नाई बाहर आने के लिए, ताकि अपने सहवासी को ले और हमेशा और हमेशा और हमेशा के जीने के लिए, और सारे अनंत युग आप फिर भी जीवित रहेंगे। यही है जिसके लिए पवित्र आत्मा है। यदि आप जरा भी खिंचाव को महसूस करते हैं, तो इसे दूर मत करो। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर आप में। ये किसके लिए है? अपने लोगों के बीच अपने कार्य को जारी रखने के लिए, ताकि अपनी कलीसिया को एक साथ लाए, ताकि कलीसिया को इस दिन में एक स्थान में लाए, लूथरन, मेथोडिस्ट और पेंटिकॉस्टल से बहुत ही आगे एक स्थान के अंदर ले पालकपन के लिए, और एक रैप्चर के अनुग्रह के लिए, कि जब कलीसिया का यह भाग, जब आत्मा यहाँ इस कलीसिया के अंदर प्रवेश करेगा, यह बस उठाकर खड़ा करेगा, और ये उन सभी छुड़ाए हुए लोगों को बाहर लेकर आएगा। यही है जिसने उस आत्मा को छुआ है। वे लूथरन जो वहाँ पर उनके पास जो सारा उजाला था उसके साथ खड़े थे धर्मीकरण में, वे मेथोडिस्ट जो फर्श पर गिरते थे और वे उनके मुंह पर पानी डालते, पवित्रीकरण में से होते हुए उन पर प्रभावित करने वाली आत्मा से, वे पेंटिकॉस्टल, वे जो सड़क पर ऊपर नीचे चले और वे उन्हें जीभों से फुसफुस करने वाले कहते और ओ बड़बड़ करने वाले और बदक भाषा में और ये सब कहते, वे उस दिन परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता में खड़े रहेंगे ठीक उतना ही निश्चित जैसे ये बाइबल यहाँ रखी है। यदि आप मुझे सेवक करके विश्वास करते हैं, आप मुझे उसका नबी कहते हो, मैं खुद को ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप सुनना, मैं आपको प्रभु के नाम से बता रहा हूँ, वे जो मसीह में हैं, परमेश्वर उन्हें अपने साथ उसके आगमन पर पुनरुत्थान पर लेकर आएगा और केवल उन्हें जो मसीह में हैं। हम कैसे मसीह में आते हैं दोस्तों? एक मत सिद्धांत के द्वारा हम सब जुड़े होने से? नहीं। एक हाथ मिलाने से हम सब अंदर आ जाते हैं? नहीं। एक पानी के जरिए हम सब बपतिस्मा लेते हैं? नहीं। या एक संप्रदाय के द्वारा हम सभी संप्रदाय हुए हैं? नहीं। लेकिन पहला कुरिन्थियों 12:13 के द्वारा एक आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से हम सभी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, उजाले में चलो जैसे वो उजाले में है, हमारी एक दूसरे के साथ संगति होती है और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारी सारी अधार्मिकता से शुद्ध करता है। एक आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया है और उसके अनुग्रह के सहभागी बने हैं। आप न्याय में नहीं जा सकते हैं, वो जो मेरे वचनों को सुनता है और विश्वास करता है। कोई भी मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता जब तक उसे पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। जब पवित्र आत्मा उसके पुनरुत्थान की गवाही दे चुका है, उसके पास अनंत जीवन है और वो कभी भी न्याय में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन की ओर चला गया है। क्या आप न्याय को कभी नहीं लेंगे? आप न्याय के लिए कभी भी सफेद सिंहासन पर खड़े नहीं होंगे? आप अपने न्याय को ठीक यहाँ पर पूरा करते हैं। आपने अपने न्याय को पार कर दिया है। जब आप पार कर लेते हैं, आप कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ और मेरी शिक्षा अच्छी नहीं है, प्रभु मेरे अंदर आए और मुझे लीजिए और मेरी अगुवाई करे। प्रभु मैं परवाह नहीं करता कि यह पागल संसार क्या कहता है, प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कीजिए। आपका तब न्याय हो गया है। अपने आप को मसीह के लिए मूर्ख के रूप में न्याय करते हैं और उसकी धार्मिकता में उस दिन हम उसकी समानता में अमर हार खड़े रहेंगे। केवल एक तरीके से, कैसे? एक आत्मा के द्वारा हम सब ने एक शरीर में बपतिस्मा लिया है और जब आप उस शरीर में होते हैं तो न्याय ने उस शरीर का पहले ही न्याय कर लिया है और आपने उसे अपने पाप की प्रायश्चित किनाई स्वीकार कर लिया है। आप कहते हैं, मैंने इसे कर लिया है भाई ब्रैनम। तब यदि पवित्र आत्मा वापस आता है और आपको एक चिन्ह के रूप में एक मोहर देता है, तो वो आत्मा आपको मसीह की देह के अंदर ले आती है। आप दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं और आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि होते हैं। आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, पुरानी बातें जा चुकी हैं और आप मसीह में नए हो। आमीन। ओह कृपा मुझे आपको यकीन दिलाने दें, मेरे मसीह भाइयों और बहनों, इस बेदारी को अपने पास से निकलकर न जाने दें। आपको अवश्य ही पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। ये क्या है परमेश्वर का आत्मा? ये किस लिए था? आपको अगुवाई करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने, आपको भरने, आपको पवित्र करने, आपको बाहर बुलाने के लिए कलीसिया के अंदर। कलीसिया क्या है? कलीसिया शब्द का क्या अर्थ होता है? बाहर बुलाए गए, अलग किए हुए। ओह मैं ठीक अभी एक उपदेश को उससे किस तरह से ले सकता हूँ? बाहर बुलाए गए, अलग किए गए, अनजाने, संसार से दूर, यात्री और अजनबी, इसे घोषणा करते हुए कि हमारा यहाँ कोई धरती पर का नगर नहीं है जिसमें हम रहने की इच्छा रखे। ओह प्रभु, जैसे अब्राहम और इजाक और याकूब परदेशी होकर देश में तंबुओं में रहने लगे, वे घोषणा कर रहे थे कि वे यात्री और अजनबी थे, वारिस के बीज, वे वहाँ पीछे उत्तराधिकारी थे। पिता, वारिस, हम उनके बीज हैं और वे एक ऐसे नगर के लिए देख रहे थे जिसका बनाने वाला और रचयिता परमेश्वर था। आमीन। वे खोज रहे थे और आज उनका बीज अब भी आने वाले नगर के लिए देख रहा है, कह रहा है, मैं इस संसार के अनुकूल नहीं होना चाहता, मुझे इस संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसे नगर के लिए देख रहा हूँ जो सच्चाई से बना हुआ हो। मैं एक ऐसे नगर के लिए देख रहा हूँ जिसमें अनंत जीवन हो, जहाँ सूरज कभी भी अस्त न होगा, जहाँ पर कभी भी बुढ़ापा नहीं होगा, जहाँ कभी दरवाजे की कुंडी पर काला कपड़ा नहीं होगा या पहाड़ी के किनारे पर कब्र नहीं होगी। मैं उस नगर के लिए देख रहा हूँ जिसका बनाने वाला और रचयिता परमेश्वर है। इसे पाने का केवल एक ही तरीका है। वहाँ पहाड़ पर से बिना हाथों का एक पत्थर काटा गया था जो संसार में लुढ़क गया और इसे चूर चूर कर दिया और इस गेहूं के समान बन जाता है, या खलियान पर ऊपर का भूसा। उस पत्थर यीशु मसीह को आने दो जो संसार के लिए ठोकर का पत्थर, एक अपमान का पत्थर, हंसी उड़ाने का पत्थर, कलीसिया के लिए ठोकर का पत्थर, लेकिन विश्वासी के लिए एक बहुमूल्य और एक चुंबकीय पत्थर, एक आश्वासन का पत्थर, एक विश्राम का पत्थर। ओह प्रभु, विश्राम करते हुए मैं जानता हूँ कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुका हूँ। मेरा प्राण विश्राम पर है। ओह सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण को विश्राम दूंगा। एक चिन्ह जिसके विषय में बुरा बोला जाएगा, उस नबी ने मरियम से कहा, यह एक चिन्ह होगा, निश्चित रूप से यह होगा, लेकिन यह एक आश्वासन होगा, यह एक प्रेम होगा, यह एक संतुष्टि होगी, यह कुछ ऐसा होगा जिसे आप जानते हैं कि आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके भाई की नाई और मसीह में आपका सेवक होने की नाई, मुझे अपने पूरे हृदय से आपको यकीन दिलाने दो। आप इसे अपने सिर के ऊपर से जाने न दें, या आपके पास से, या आपके नीचे से न जाने दें। इसे अपने हृदय में ग्रहण करें और आप धरती पर एक आनंदित व्यक्ति होंगे। मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूं कि आपको $10,00,000 मिलेंगे। नहीं श्रीमान, भाई लियो, मैं सोचता हूं कि अब बहुत अधिक इसका वादा किया गया है। लाखों डॉलर अलग अलग लोगों ने जो बातें कही हैं, यदि आप एक मसीह होते हैं तो आपको लाखों डॉलर मिलते हैं और आप एक धनी व्यक्ति होंगे। मैं आपसे ऐसा कुछ भी वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे यह वादा कर रहा हूँ, केवल एक चीज जो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, उसके उद्धार का, उसका अनुग्रह हर एक परीक्षा के लिए काफी है। पेंटिकॉस्ट के दिन पर लोग, वे यहाँ तक उसे चाहते भी नहीं थे जो उन्होंने पाया था। अब लखपति के बारे में बात करें, उन्होंने उसे नहीं चाहा जो उनके पास था। बहन एंजी, मैं आपको और गर्टी को गाते हुए सुनना चाहता हूँ इन दिनों में से एक दिन। बहन कहाँ है? घर आने का सप्ताह इन दिनों में से एक दिन। उनमें से बहुत से तब से लेकर सीमा को पार कर चुके हैं। ओह प्रभु, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को नहीं मांगा, उन्होंने पैसे नहीं मांगे। इसलिए पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें इसे देता हूँ। और मैं आज रात ये कहता हूँ मित्रों, वो आनंद, प्रेम, आश्वासन जो मेरे पास मसीह और उसके पुनरुत्थान का है, जो मेरे पास है, मैं इसे आपके सामने रखता हूँ। मैं आपके लिए परमेश्वर के बच्चों की नाई प्रस्ताव को रखता हूँ। और आप आकर और क्रूस पर बने रहें, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आप ना उठें। जब आप कल रात को आते हैं तो आप या तो यहाँ जाने के लिए आए और समाप्त होने तक बने रहें, या आगे आए और हम प्रार्थना करेंगे और आप पर हाथ रखेंगे। जाएं, यही बाइबल का आदेश है कि पवित्र आत्मा के लिए उन पर हाथ रखो। और उसके बाद हम जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे। यदि आप ठीक यहीं पर बने रहें, यदि आप सारी रात बने रहें, अगले दिन तक बने रहें, अगले दिन तक बने रहें, छुट्टियों में से होते हुए बने रहें, पहले वर्ष तक बने रहते हैं और बने रहें, तब तक बने रहें कि जो कुछ हम कल रात के बारे में निर्देश देंगे, ये आपको बाइबल में दिखाएगा कि क्या आने वाला है, वो आएगा। और जब ये आता है तब वहाँ सतावट में इतने शैतान नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं। स्वर्ग की आनंद की घंटियाँ बज उठेंगी। भाई ओथल, मैं आपको बता रहा हूँ, यह बस आपको आग में रख देता है। यहाँ एक बूढ़ा भाई बैठा हुआ है। मेरा एक बूढ़ा भाई, वह एक गिरोह का सदस्य था, अपनी बगल में बंदूक लेकर चलता था, कोने के पास के एक मनुष्य के लिए रुका रहता, किसी के लिए तो जिससे कि वो उनके भेजे को उड़ा दे। और क्या हुआ, एक दिन उसने देखा और जीवन पर विश्वास किया और वो आगे चल पड़ा। वो मेरी सभाओं में आने लगा और उस गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था और तंबू के पास झाड़ियों में लेटता और सोता भूखा और प्यासा, और एक दिन पवित्र आत्मा आया, ओह मेरे भाई, इसने आपको बदल दिया, क्या ऐसा नहीं है? इसने जीवन को लाया और मृत्यु को दूर ले गया, घृणा चली गई और प्रेम अंदर आ गया, ओह प्रभु, बैर और झगड़े सब दूर हो गए, नया जीवन अंदर आ गया। यहाँ देखें दूसरों को दूसरे समयों में, दूसरों को दूसरे समयों में, और वहाँ उसमें से होते हुए ओ स्वर्ग की आनंद की घंटियाँ बज रही हैं। मित्रों, मेरे पास इसे व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं है। सुनना कि मैं हो सकता है इसे छोड़ दूं, यदि आपने मेरी गवाही पर मसीह के सेवक के रूप में विश्वास किया है और आपको परमेश्वर की बाइबल से इसे दिखाने की कोशिश की है कि यह सही है, और यदि मेरे शब्द ऐसे दिखाई देते हैं वे इस विषय में थोड़े हो सकता है अजीब हों, तो वैज्ञानिक दुनिया में उस तस्वीर की ओर देखें, उस फल को देखो कि यह आग का स्तंभ जिसने इसराइल के बच्चों का नेतृत्व किया, उस फल को देखो जो इसमें उत्पन्न होते हैं, देखें कि ये क्या करता है, ये क्या बताता है। यह मैं नहीं हूँ जो बोल रहा है, ये तो वो है जो आप में से होकर बोलता है। आप देखें, यह मैं नहीं हूँ जो दर्शन को देखता हूँ, यह तो वो है जो आपके जरिए से बोलता है। यह मैं नहीं हूँ जो बीमारों को चंगा करता हूँ, यह तो वो है जो आप में है बीमारों को चंगा करता है। यह मैं नहीं हूँ जो प्रचार को करता हूँ, मैं एक पिछड़ा हुआ डरपोक हूँ और उस विचार से ही भागता हूँ, लेकिन यह तो वो है जो बोलता है। मैं वचन को नहीं जानता, लेकिन वो इसे जानता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यह तो वही है, और वहाँ है वो, और वही परमेश्वर का दूत आज रात ठीक यहाँ इस भवन में है। ओह, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। अब कितने लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? हमारे जीवन की जांच को करें। कितनों ने इसे नहीं पाया है और चाहते हैं? हाथ उठाकर कहें, भाई ब्रैनम, मेरे हृदय की गहराइयों से मैं पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूं। हर जगह परमेश्वर आपको आशीष दे। आप में से कितनों ने इसे प्राप्त किया है और उस तरह से जाना चाहते हैं जैसे उन्होंने प्रेरितों के काम 4 में किया था, और कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, चंगा करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं और आपके पवित्र बालक यीशु के नाम में चिन्ह और अद्भुत कार्य को दिखाते हुए, और मुझे बोलने के लिए पूरी तरह से हियाओ और प्रेम दीजिए और नए रूप से भर दीजिए। हाँ, यहाँ मेरा भी है, परमेश्वर मुझे इसे दे दीजिए। आइए हम गहरी ईमानदारी से अपने सिरों को झुकाएं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को अपने हृदय में लिए हुए, प्रभु यीशु, आज रात हम वचन और पवित्र आत्मा के इर्द गिर्द संगति करने के बाद इस एकत्र होने की छोटी सी सभा को समाप्त करते हैं। किस तरह से उसने हमें आशीष दी है और हमारे हृदयों में उसके वचन के तेल को उंडेला है। यहाँ पर सेवक गण है, यहाँ पर मनुष्य है जो जीवन भर चले थे, जिन्होंने चखा और देखा है कि प्रभु भला है। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा अब क्या है, यह एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए यह अनंत जीवन है, और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा था जिसे वापस भेजा गया, और वो आज हम में है जैसे परमेश्वर हमारे ऊपर था उस अग्नि के स्तंभ में। उसके बाद वो हमारे साथ चला, एक शरीर जिसे इमानुएल कहा जाता था, परमेश्वर हमारे साथ, और अब वो हम में है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर हम में। ओह, यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। तुम उस दिन इसे जान जाओगे, क्योंकि आप अभी एक अंधकार की दुनिया में हो, लेकिन उस दिन तुम जान जाओगे। पिता, इसे साफ और परिपूर्ण नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि तब हमारे पास विश्वास करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के सभी कार्य विश्वास के द्वारा संचालित होते हैं, और आपके वचन में विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा के उस प्रमाण में जिसे हम जानते हैं अब है। मैं मांगता हूँ कि यहाँ पर हर एक भूखा प्राण पवित्र आत्मा से भर जाएगा। जिनके पास ये नहीं है और वे इसके लिए भूखे हैं, केवल याद रखें, हम उनसे कहेंगे, प्रभु, जैसा कि इसे आपने कहा था, धन्य हो तुम जब तुम भूखे और प्यासे होते हो, तुम भर दिए जाओगे। यही एक प्रतिज्ञा है, और ये यहाँ तक भूखा होना भी धन्य है। आप धन्य हैं यहाँ तक इसे जानना कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। इसके लिए कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे पहले नहीं खींचता है। और प्रभु, जो यहाँ के पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया है, मैंने अपने हाथ को ऊपर किया था, हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए ताकि आपके पवित्र बालक यीशु की ओर हाथ को आगे बढ़ाएं, जिससे कि चिन्ह और अद्भुत कार्यों को किया जा सके, जिससे कि यह एक गहरी सेवकाई हो सके जो अब तक हो चुकी है उससे भी बड़ा काम हो। हमें लोगों से बात करने के लिए हिम्मत और प्रेम दीजिए, इसे प्रदान करें, हर चीज में हमारे साथ रहे, हम यीशु के नाम में मांगते हैं। और कल रात प्रभु होने पाए ऐसी सनसनाती हुई आंधी आकर इस भवन में उतरे कि यह एक और पेंटिकॉस्ट के दिन के समान होगा। बुनियाद को डाला जा चुका है, सब कुछ तैयार है, बैल को मारा गया है, मोटे बछड़े मारे गए हैं, मेढ़े मारे गए हैं, मेज तैयार है, मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। हे प्रभु कल रात को इस भवन के अंदर एक पेंटिकॉस्ट की जुबली भेज दीजिए और हरेक प्राण को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर दीजिए, इसे प्रदान करें पिता, हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
About the Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000.
Amen.
The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wonder speak before His name, and they are called the bride. Oh, you're neglected and despised. One day the Lord will bring those chosen ones in the gate and